तो ये अलग अलग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसके कारण क्या है? एक आदमी ब्रह्मा, एक जीव ब्रह्मा और एक चींटी कुत्ता बिल्ली क्यों? एक धीरू भाई अंबानी और एक व्यक्ति का जन्म अनाथ आश्रम में क्यों? ये अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दिस वी हैव टू थिंक। ये हमने ऑब्जर्व किया, अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि ये प्रश्न यदि हम समझेंगे कि अलग अलग जो वेराइटीज हैं, अलग अलग जो स्टैंडर्ड हैं, उसके पीछे कारण है क्या है, यदि उसको समझेंगे तब तो हम समझ सकते हैं ये प्रश्न कि क्या हमारे पुरुषार्थ से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम अपना बढ़ा सकते हैं या ये पूर्व निश्चित है। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है समझना कि हमारे जो अलग अलग स्टैंडर्ड हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो निश्चित रूप से जैसे हमने उस पोस्टर में दिखाया कि किसी का जन्म ही हुआ है अंबानी परिवार में, किसी का जन्म ही हुआ है अनाथ आश्रम में, तो अभी पुरुषार्थ करने का तो टाइम ही शुरू नहीं हुआ ना, ये तो जन्म से ही एक व्यक्ति का जन्म वहां हुआ है। और धीरूभाई अंबानी के घर में जन्म हुआ है ना, बहुत रिच फैमिली में, तो स्वाभाविक है बहुत सारी उसको फैसिलिटीज हैं, वो जन्म से ही बहुत अच्छा उसका स्टैंडर्ड खाने का और सब चीज का रहेगा। और जो व्यक्ति गरीबी की हालत में है तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अभी तो पुरुषार्थ शुरू नहीं हुआ इस जीवन के अंदर, अभी तो पुरुषार्थ शुरू नहीं हुआ, जन्म से ही डिफरेंस है। तो अगर ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो डिफरेंस है इसका कारण, हाथ बाहर रखिए, इसका कारण यदि हमारा इमीडिएट कार्य है इस जीवन के अंतर्गत, तुरंत जो हम उसके लिए किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, यदि एकमात्र वही उसका कारण होता हमारी सफलता का, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यदि उसका कारण केवल हमारा पुरुषार्थ होता तो फिर ये जन्म से ही डिफरेंसेस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? एक प्रपोजिशन है, सब कुछ हमारे हाथ में है, जैसा करोगे वैसा ही होगा, मतलब इमीजिएटली इसी समय में इसी जीवन में आप यदि ये चाहते हैं बिल गेट जैसा बनना, सो यू वर्क फॉर इट एंड यू विल गेट इट। इफ यू विल वर्क यू विल गेट इट, देयर इज नथिंग लाइक प्रीवियस कर्मा और डेस्टिनी, इट्स इन योर हैंड। अगर ऐसा सही है तो फिर जन्म से ही डिफरेंस क्यों? व्हाट इज आंसर? आपके लिए प्रश्न है, अगर हम ये प्रोपोजिशन लेके चल रहे हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में, आप में से कितने लोग ये इस तरफ झुकाव में है, ये सोचते हैं कि यस एवरीथिंग इज इन अवर हैंड, नथिंग इज लाइक प्रीवियस कर्मा। ओके, सो देन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ तो क्यों, पुरुषार्थ तो भी उसने किया ही नहीं ना उस धीरूभाई अंबानी परिवार के लिए। दैट इज डिफरेंट थिंग। जिसका जन्म रिच फैमिली में हुआ तो जन्म हुआ, जन्म से पहले तो पुरुषार्थ नहीं किया ना उसने, तो बिना पुरुषार्थ किए उसको वो रिच फैमिली में जन्म कैसे मिला? अगर केवल पुरुषार्थ ही कारण है हमारे भौतिक सुख दुख का, तो फिर बिना पुरुषार्थ किए, अभी तो पुरुषार्थ शुरू ही हुआ, तो फिर ये डिफरेंस क्यों? धीरूभाई मानी क्या, दैट्स डिफरेंट थिंग। वो जो उसके घर में जन्म लिया उसने तो अभी कुछ नहीं किया ना पुरुषार्थ, तो वो डिफरेंस क्यों? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? आप समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? आर यू गेटिंग? आप समझ रहे हैं? सो वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट। अगर केवल हम पुरुषार्थ को ही लेके चलें कि हाँ हमारा पुरुषार्थ इस जीवन में तुरंत किसी कार्य करने के लिए हम जो कार्य करते हैं वही एकमात्र कारण है उसकी सफलता का, किसी भौतिक चीज को प्राप्त करने का, तब फिर ये प्रश्न चिन्ह हमेशा रहेगा, फिर जन्म से ही पुरुषार्थ शुरू होने से पहले से ही क्यों डिफरेंस? तो इसका मतलब कुछ और भी चीज है जो एक्ट कर रही है हमारी इस भौतिक जगत में, जो भी हमें सफलता या सुख या दुख मिल रहे हैं उसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व है। तो ये ज्ञान हमको शास्त्र बताते हैं कि क्या है वो फैक्टर्स। तो क्या कहा गया है शास्त्रों में, कि तस्यैव हेत प्रयतेत कोविदा यम न लभ्यते भ्रमतम उपरि अधा तल्लभ्यते दुखवत अन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहमस. आर यू चैंटिंग? नो, वी शुड ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम, आइदर चैंट और हियर. ओके, सो जस्ट लीव इट, जस्ट कंसंट्रेट ऑन हियरिंग नाउ. व्हेन चैंटिंग, कंसंट्रेट ऑन चैंटिंग. तो शास्त्र में बताया गया है कि पहले तो हम, क्या हम शरीर हैं या आत्मा हैं? आप शायद पहली बार आए. यस, सो एक्चुअली इससे पहले हम कुछ क्लासेस में डिस्कस किए, हमारी आइडेंटिटी क्या है, पहले तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा. क्या जन्म से ही हमारा एग्जिस्टेंस शुरू होता है? जैसे हमारा, आपकी कितनी उम्र हुई? 20 साल. तो क्या 20 साल से ही आपकी एग्जिस्टेंस शुरू हुई या इससे पहले भी आप एग्जिस्ट करते थे? व्हाट डू यू थिंक? क्या जन्म से ही हमारी एग्जिस्टेंस शुरू होती है या वी एग्जिस्ट बिफोर दैट ऑल्सो? दैट मीन्स ये बॉडी तो शुरू हुई जब से गर्भ के अंदर शुक्राणु और अंड मिलते हैं, तब से ये बॉडी शुरू होती है. क्या तभी से ही हमारी एग्जिस्टेंस शुरू हुई या हम इस शरीर निर्माण से पहले भी एग्जिस्ट करते थे? व्हाट डू यू थिंक? तभी बॉडी तब से एग्जिस्ट करती है. बॉडी तो एग्जिस्ट करती है, पर हम, क्या हम शरीर ही हैं? अगर हम शरीर ही हैं, नथिंग बियॉन्ड बॉडी, तब तो फिर शरीर का जन्म जब से शुरू हुआ तब से ही हम एग्जिस्टेंस में हैं, उससे पहले नहीं है. लेकिन यदि हम शरीर के बियॉन्ड कुछ और हैं, तब फिर शरीर के जन्म होने से पहले भी हम एग्जिस्ट करते हैं. गेटिंग द पॉइंट? तो हम जो हैं, शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, इसीलिए ये शरीर बनने से पहले भी हम एग्जिस्ट करते थे. अब कैसे समझें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं? जो पहले सुन चुके हैं क्लास में वो एक्सप्लेन करें दो मिनट, जो लोग नए आए हैं उनके लिए. यस,
भगवान जैसे कहते हैं,
नो, कॉमन सेंस,
कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से तो अभी दिख रहा है कि अभी हम अपनी बॉडी चेंज कर रहे हैं और हम जो है वो फील कर रहे हैं. जैसे कि अभी हम 20 ईयर के हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम छोटे थे तभी हमारी बॉडी अलग थी, तभी मैं कूदता था, खेलता था. और अभी जो मेरी बॉडी है, अगर मैं अपना बचपन का फोटो देखता हूँ तो टोटली डिफरेंट है. बचपन का मेरा फोटो है, अभी का मेरा जो फोटो है बॉडी का, वो टोटल डिफरेंट है. तो भगवान क्या कहते हैं कि अभी ये लॉजिकल है, भगवान की बात तो एक बात है, ये लॉजिकल है कि अभी ही हम, हमारी बॉडी जब 0 से 20 ईयर है उसी दरमियान हमने हमारी बॉडी चेंज की है. मगर हम लोग अभी, हमारी कॉन्शियसनेस ये है कि मैं वही हूँ, मैं मीन्स
तो अभी वो जो बचपन का शरीर था वो अभी शरीर मर गया है, वो नहीं है इस समय, इट्स अ न्यू बॉडी. और मेडिकल साइंस के अनुसार भी हमारे सब मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं 7 साल के अंदर. लेकिन आप क्या फील करते हैं? आप तो एग्जिस्ट करते हैं, बॉडी मरी, लेकिन आपको, आप तो नहीं मरे. जब बच्चे की बॉडी मरी तब आप नहीं मरे ना हमारे पेरेंट्स को दुख हुआ हो ये. जब बड़े होता है बच्चा तो क्या माँ बाप दुख करते हैं, वो मेरा बच्चा चला गया, ऐसा नहीं. दे अंडरस्टैंड कि बच्चा तो वही है, ये तो शरीर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब बदल रहा है, बदल रहा है मतलब पुराना शरीर खत्म हो रहा है, नया आ रहा है. करेक्ट? तो इस तरीके सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है. अर्थात हम केवल ये, जब से ये शरीर, जब से इस जीवन का शरीर मिलना शुरू हुआ, इस समय जब तक आपको याददाश्त है, जब से ये बॉडी शुरू हुआ जीवन, जब से आपका ये मनुष्य जीवन शुरू हुआ, तब से जो शरीर मिलने शुरू हुए, हम उससे पहले से एग्जिस्ट करते हैं. ओके, तो इसीलिए हम पहले जीवन में क्या कार्य किए, पहले के जीवनों में हम क्या कार्य किए, उसके परिणाम स्वरूप हमको एक प्रकार का शरीर मिलता है. इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि क्यों किसी को जन्म से ही अमीर परिवार में जन्म मिलता है तो किसी को गरीब परिवार में जन्म मिलता है, किसी को बहुत अच्छी बॉडी मिलती है तो किसी को जन्म से ही इज डिजीज्ड, जन्म से ही वो बीमार होता है उसका शरीर. तो शास्त्र के अनुसार और कॉमन सेंस लॉजिक के अनुसार, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो इसीलिए हमें केवल इस जीवन के कार्यों को ही एकमात्र कारण नहीं समझना चाहिए अपनी सक्सेस या डिफीट का। जैसे कोई आदमी किसी का कुछ मर्डर करे या चोरी करे और फिर एक दूसरी जगह चला जाए रहने के लिए और एक नई शर्ट और पैंट बदल ले, नया शर्ट और पैंट पहन ले, तो जो उसने गुनाह किया, जो उसने कार्य किया था, क्या वो उससे बच जाएगा? अगर वो बोले अभी तो मैं दूसरी जगह रहता हूँ, अभी तो मैं दूसरी शर्ट पहने हुए हूँ, लेकिन शर्ट ने वो काम नहीं किया। अल्टीमेट रीजन वॉज नॉट शर्ट, अल्टीमेट रीजन वॉज दैट पर्सन। तो शर्ट के बदलने पर भी वो व्यक्ति ने जो काम किया उसका परिणाम तो उसको भुगतना पड़ेगा ही, भले ही वो अपनी ड्रेस चेंज कर दे, अपना रहने का स्थान चेंज कर दे, करेक्ट। तो उसी प्रकार से आत्मा जो पहले के शरीरों में रहा आया है वो तो अल्टीमेट कारण है कुछ भी कार्य करने का। तो अभी हमने दूसरा शरीर धारण किया है, तो वो ऐसे ही है जैसे कि हमने ड्रेस चेंज किया है। तो ड्रेस चेंज करने से आत्मा ने जो पहले के शरीरों में जो कार्य किया है उसका परिणाम क्यों उसको ना मिले? आप समझ रहे हैं? आर यू फॉलोइंग द लॉजिक? तो जो कोई भी कार्य होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कोई भी कार्य के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मान लीजिए किसी आदमी ने किसी का खून किया, तो खून किससे किया? चाकू से किया मान लीजिए। तो क्या चाकू रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? या इन वन सेंस यस, अगर चाकू नहीं होता तो खून नहीं होता, चाकू के माध्यम से ही वो हुआ कार्य। सो इन वन सेंस दैट नाइफ इज द कॉज, बट इज इट द अल्टीमेट कॉज? क्या ये रिस्पॉन्सिबल कॉज है? क्या हम चाकू को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, चाकू तो एक नॉन लिविंग एंटिटी है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है उस कार्य में, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं है, चाकू के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस आदमी ने उसको यूज किया उस चाकू को, करेक्ट। तो रिस्पॉन्सिबल है वो आदमी। उसी प्रकार से हम शरीर, एक शरीर में कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर तो चाकू की ही तरह निर्जीव है ना? ये शरीर किस किस चीज का बना है, किन किन तत्वों का बना है? पंच तत्वों का बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और इसके ऊपर और तीन सूक्ष्म तत्व हैं, क्या क्या? एंड नॉट सोल, बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी, फॉल्स ईगो, माइंड एंड इंटेलिजेंस, ओके। ये तीन, तो टोटल आठ, इन आठ तत्वों का ये पूरा एलिमेंट बना। तो ये जो आठ तत्व हैं ये जीवित हैं या निर्जीव हैं? जीवित हैं। पृथ्वी ये जीवित है, पानी जीवित है, पंचभूत में क्या आया? अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। तो ये सजीव है कि निर्जीव है? ये निर्जीव है, दिस अ मैटर, ये मैटर है। हाँ, लेकिन ये मैटर जब, जैसे ये बॉडी के अंदर ये मैटर, ये बॉडी बना हुआ है अर्थ वाटर फायर ईथर, लेकिन अभी इस बॉडी से हम बहुत सारा काम करते हैं। ये आई एम लिफ्टिंग दिस नाउ यूजिंग दिस हैंड, आई एम लिफ्टिंग, आई एम डूइंग सम एक्टिविटी। क्यों? अगर अभी इसी समय कोई डेड बॉडी होगा सो द डेड बॉडी कैनॉट लिफ्ट। सेम बॉडी, वही अर्थ वाटर फायर एयर ईथर का ही बना हुआ है, बट दैट डेड बॉडीज हैंड कैनॉट लिफ्ट दिस, बट ए लिविंग बॉडीज हैंड कैन लिफ्ट दिस। वॉट इज द डिफरेंस? वाई, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? ए डेड बॉडीज हैंड, सेम हैंड, डेड बॉडीज हैंड कैनॉट लिफ्ट, ए लिविंग बॉडीज हैंड कैन लिफ्ट सोल। सो इन द लिविंग बॉडी देर इज अ सोल। हैंड इज सेम, हैंड इज मैटर, सेम थिंग, बोन्स, यू सी स्किन, बोन्स, फ्लैश एंड द मसल्स, एवरीथिंग इज देयर इन डेड बॉडी ऑल्सो। लेकिन जो एनर्जी देने वाला है इसको सोल, वो नहीं है, इसीलिए दिस हैंड कैनॉट डू एनीथिंग, ओके। तो ये हाथ माध्यम है, इट्स ए मीन्स टू लिफ्ट इट, बट इट्स नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग, रेस्पॉन्सिबल इज द सोल। तो जब तक सोल है तब तक ये हाथ लगता है सजीव। जब तक गाड़ी में पेट्रोल है तब तक गाड़ी चलेगी, जब पेट्रोल खत्म इट विल नॉट मूव, करेक्ट। तो पेट्रोल उसकी पीछे एनर्जी है, लेकिन पेट्रोल भी अंतिम एनर्जी नहीं है। अगर पेट्रोल भी है लेकिन ड्राइवर नहीं है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, करेक्ट। सो देयर कैन बी मेनी कॉजेज इन बिटवीन, बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, गाड़ी है, गाड़ी का मैकेनिज्म है, फिर पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल के पीछे भी वो आदमी है जो बैठा है, और फिर वो आदमी है लेकिन अगर उस आदमी के अंदर सोल नहीं है, सो अगेन दैट मैन कैन नॉट ड्राइव द कार. सो अल्टीमेटली सोल, अल्टीमेटली मैटर को चलाने के लिए देयर मस्ट बी टच ऑफ लिविंग पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड सोल. इज दिस पॉइंट क्लियर? जब तक लाइफ का टच नहीं है तब तक मैटर इज कैनॉट एक्ट, कैनॉट मूव, कैनॉट फंक्शन. ओके, तो इसीलिए जो भी कार्य हो रहा है उसके लिए अल्टीमेटली जिम्मेदार हैं आत्मा, यानी हम कौन है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है. शरीर हमारा एक वस्त्र की तरह से है, ये हमको एक इंस्ट्रूमेंट दिया है कार्य करने के लिए, बट दिस इज नॉट अवर आइडेंटिटी. हम एक घर दिया है रहने के लिए, पर हम घर नहीं है, हम उस घर के अंदर रहने वाले हैं. उसी प्रकार से हमें एक रहने के लिए घर दिया है, आत्मा को रहने के लिए घर दिया है, जिसे हम कहते हैं शरीर, और जिसके माध्यम से हम काम करते हैं. आप ऑफिस में जाते हैं, आपको देते हैं, ओके यू आर टू वर्क विद दिस पीसी, यू आर गिवन ए पीसी टू वर्क, यू आर गिवन ए टेबल, आपको एक चेयर दिया है, टेबल दिया है, अब आप ये सब दिया है, आप उसके माध्यम से काम कर रहे हैं, आप उस कंप्यूटर के माध्यम से काम कर रहे हैं. हाँ, तो उसी प्रकार से हमको एक शरीर दिया है जिसके माध्यम से हम इस भौतिक जगत में अलग अलग कार्य करते हैं. तो कोई भी कार्य को करने के पीछे कारण, अल्टीमेट कारण, रेस्पॉन्सिबल कारण, वो होता है आत्मा, न कि शरीर जो माध्यम है. जैसे वो चाकू या कोई भी, वो कारण नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका रेस्पॉन्सिबल है आत्मा. तो इसीलिए जो पूर्व जन्मों में पूर्व शरीरों के अंदर रहते हुए जो आत्मा ने कार्य किए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उस आत्मा के ऊपर रहेगी ना, करेक्ट? हम बोले वो तो हमने पिछले जन्म में किया, उसका हमें अभी क्यों परिणाम मिल रहा है? लेकिन आप जो करने वाले थे, आप तो वही रहे ना पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी, आप तो वही आत्मा है. जैसे कि वही आदमी जिसने किसी दूसरी ड्रेस में कुछ कत्ल किया और अभी ड्रेस चेंज कर लिया, तो ड्रेस चेंज करने से उसका गुनाह माफ नहीं होता, क्योंकि करने वाला वो व्यक्ति था ना कि ड्रेस, करेक्ट? या वो चाकू चेंज कर ले, दिस इज आई एम हैविंग अ न्यू नाइफ नाउ, दैट्स नॉट द सेम नाइफ, दैट्स डिफरेंट नाइफ, कोई बात नहीं, लेकिन रेस्पॉन्सिबल तो आप हैं उसके. तो इसी प्रकार से पूर्व जन्मों में जो कार्य हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आत्मा की, और क्योंकि आत्मा वही चली आ रही है, सेम पर्सन, तो इसलिए चाहे वो पिछले जन्म का कर्म हो, उसका जो इफेक्ट है वो इस जन्म में कैरी ऑन हो सकता है. लॉजिकल, आर यू फॉलोइंग सबको? एनी डाउट सो फार? ओके, तो इस तरीके से ये जो एक्शन और रिएक्शंस हैं, कर्म और उसका प्रभाव, कर्म फल, इसका जो चक्र है वो जन्म जन्मांतर चलता है, ना कि एक जन्म तक चलता है. शरीर तो केवल बदलते रहते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है आत्मा को, वो शरीर बदलने पर भी भुगतता रहना पड़ता है. जैसे इसी जीवन में हमने देखा, हम शरीर बदलते रहते हैं. अभी कोई आदमी मान लीजिए 20 साल का है, और 20 साल में वो कुछ कार्य करता है, और 40 साल में उसका शरीर तो बदल जाएगा, 7 साल के अंदर शरीर बदल जाता है, मेडिकल साइंस के अनुसार भी सब मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं. तो लेकिन 40 साल पे उसका नया शरीर है, लेकिन सामान्य नियम से भी, लॉ ऑफ गवर्नमेंट के भी द्वारा भी, 20 साल में उसने कोई कुछ भी किया है, उसका पनिशमेंट, उसको अगर वो पकड़ा गया 40 साल की उम्र पे, तो भी उसको पनिशमेंट मिलेगा. ऐसा नहीं हो, मैं तो 20 साल में किया, वो तो अलग बॉडी था, अभी अलग बॉडी है, नो प्रॉब्लम, बॉडी अलग है, बट यू आर द सेम पर्सन, आप तो वही है. तो उसी सिद्धांत के अनुसार हम पूर्व जन्मों में जो कार्य किए हैं, उसका परिणाम हमें इस जीवन में क्यों ना मिले, मिल सकता है. तो हमारे शास्त्र इसलिए हमको बताते हैं कि जो कर्म और उसका प्रतिफल है, वो कई कई जन्मांतर तक हमारे साथ चलता रहता है. तो जो ये प्रतिफल हैं, वो कई प्रकार के होते हैं. प्रतिफल मतलब रिएक्शंस, जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक रिएक्शन बनता है, रिएक्शन बनता है. क्यों? क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो इस भौतिक जगत के अंदर नियमों के अंदर रह करके कर रहे हैं. हम लोग ऐसा नहीं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई हम पर कोई नियम नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, सब कुछ इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है. हम लोग एक नियम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, इसीलिए जैसा हम कार्य करते हैं नियमों के द्वारा हम बाध्य हो जाते हैं उसके फल भुगतने के लिए, उसका फल भुगतने के। प्लीज टर्न ऑफ योर मोबाइल्स बिकॉज इट विल डिस्टर्ब, आई शुड ऑल्सो डू दैट। तो कर्म का सिद्धांत के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं प्रकृति के नियम के द्वारा हम बाध्य रहते हैं। जैसे अभी आप इस यहां गुजरात में रह रहे हैं, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, तो ट्रैफिक के कुछ नियम हैं। तो अभी यदि आप ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इमीडिएटली उसका एक रिएक्शन आएगा, करेक्ट। तो उसी प्रकार से जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक रिएक्शन बनता है, प्रतिफल बनता है जो हमको भुगतना पड़ता है। अभी जो प्रतिफल है ये कई प्रकार के होते हैं, कई वैरायटीज होती हैं प्रतिफल की। क्या क्या वैरायटी होती हैं? एक तो होता है प्रारब्ध कर्मफल, वो कर्मफल जो ऑलरेडी आप भुगत चुके हैं, जो ऑलरेडी मैच्योर्ड हो गया है। आपने एक बीज बोया, बीज में से एक पौधा निकला और फिर उसके ऊपर फल आए, फूल आया और फिर फल आए। तो कर्म फल वो जो ऑलरेडी मैच्योर्ड हो चुके हैं, जो फलित हो चुके हैं, उन्हें कहते हैं प्रारब्ध कर्म फल। तो जो हमारा जन्म के अनुसार जो निश्चित हो जाता है, जो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, यानी कि जो ऐसे कर्म फल हैं जो ऑलरेडी हम लोग भुगत चुके हैं, जैसे किसी का जन्म अमीर परिवार में हुआ, किसी का गरीब परिवार में हुआ, तो वो कर्म फल के अनुसार एक व्यक्ति को गरीब परिवार में जन्म मिला और एक को अमीर परिवार में जन्म मिला। तो अमीर और गरीब परिवार में जन्म होना वो होता है प्रारब्ध कर्म फल, यानी कि जन्म के टाइम पर ही वो फल उसको मिल गया है ऑलरेडी। किसी को बॉडी मिला है बहुत हष्टपुष्ट और किसी को मिला है कंजेनिटल डिसऑर्डर्स। तो ये क्या दिखाता है कि वो कर्म फल का रिएक्शन जो उसको भी मिल रहा है, जिसकी वजह से वो डिजीज्ड है, वो फलित हो चुका है ऑलरेडी, ऑलरेडी ही इज फ्रक्टिफाइड। फिर एक दूसरी प्रकार का कर्मफल होता है जिसे हम बोलते हैं अप्रारब्ध कर्मफल। अप्रारब्ध मीन्स जो अभी भी फ्रक्टिफाई नहीं हुआ है, अभी भी वेटिंग में है। बीज बो दिया है आपने, बीज बो दिया है, पौधा बड़ा हो रहा है, फल आ गया है, लेकिन अभी और भी फल आने की तैयारी में है। सब एक ही टाइम में तो फल नहीं आए थे ना, एक बार आया, अभी और भी फल आने की तैयारी में है। तो बीज आपने बार बो दिया, उससे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में पौधा बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार से एक बार हमने कोई भी काम कर दिया, फिर उसके जो रिएक्शंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप आते रहते हैं। तो एक प्रकार का है जो ऑलरेडी हम इस समय के अंदर भुगत चुके हैं। लेकिन ऐसे और बहुत सारे कर्म फल हैं जो हमने कर्म तो कर दिए अपने पहले, आज से पहले कर्म कर दिए, लेकिन उसके फल अभी भुगतने बाकी हैं, अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं वो फल। तो वो समय समय पर आपको मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, इसलिए समय समय पर हमारे साथ अलग अलग प्रकार की चीज़ घटती रहती हैं, हमें अलग अलग प्रकार के दुख मिलते रहते हैं, हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन वो पूर्व जन्म के कर्म फल जब उस टाइम पर आकर के फलित होते हैं तब हमको भोगने पड़ते हैं। एंड देन वी वरी, मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, बट यू डोंट रिमेंबर, आपने ऐसा क्या किया जिसका फल अभी आपको मिल रहा है। तो ये कर्म के सिद्धांत के अनुसार फल जो है वो अलग अलग समय पर पकता है। तो कुछ समय है, कुछ फल हैं जो कल पकने वाले हैं, एक साल बाद पकने वाले हैं। ऑलरेडी आपने वो बीज बो दिया है, वो काम कर दिया है, वो एक्शन यू हैव डन, लेकिन वो फल का समय आएगा तब आपको फल मिलेगा। आपने अमरूद का पेड़ लगाया, उसका टाइम होता है ना, 5 साल बाद फल देना शुरू करेगा, और ये सीजन में फल देगा, अभी फिर नेक्स्ट सीजन में फल आएगा, बिकॉज इट इज फॉलोइंग ए लॉ, उसके एक नियम के साथ चल रहा है। तो उसी प्रकार से हम भौतिक जगत में भी हम प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं, उसके अंडर में चलते हैं। इसलिए आप कार्य आज कर दिए लेकिन कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसका एक फल बना है जो 2 साल बाद में पकने वाला है। तो 2 साल बाद में आपको उसका फल मिलेगा, उस समय आपको याद भी नहीं होगा मैंने क्या किया, लेकिन फल तो उससे मिलेगा आपको, और फिर वो आपको भुगतना होगा। तो वो कहते हैं अप्रारब्ध कर्म। और फिर उसके आगे अप्रारब्ध कर्म के आगे फिर होता है कूट, कूटम, कूट मतलब बीज, अभी फल, फल के अंदर बीज बनता है ना, फिर से फल के अंदर फिर बीज बनता है, तो और फिर उस बीज से दोबारा से एक और वैसा ही पौधा बनता है। तो कूट क्या है, वो बीज बनने से पहले की स्टेज है, बीज बनने से पहले की स्टेज कूट, मतलब बीज बनने की तैयारी है और फिर नेक्स्ट स्टेज है बीज, सीड बन गया। तो इसलिए ये चार प्रकार के रिएक्शन होते हैं, प्रारब्ध कम, अप्रारब्ध, कूट और बीज। तो बीज की वजह से जो आपने कार्य आज किया वो अल्टीमेटली एक बीज में बन जाएगा, उस बीज की वजह से आप दोबारा वैसा ही कार्य करेंगे और फिर उससे वैसा ही फल पेड़ बनेगा और फिर उसका भी एक बीज बनेगा, फिर करेंगे। तो इस प्रकार से साइकिल कर्म का चलता रहता है, आप एक प्रकार का कार्य करते हैं यानी कि बीज बोते हैं, फिर उससे आपको धीरे धीरे फल मिलते रहते हैं और फिर फल के अंदर फिर बीज भी लगता है और फिर उस बीज की वजह से आप वैसा ही कार्य करने के लिए दोबारा प्रेरित होते हैं और फिर उसके आगे फिर दोबारा से फल बनता है, फिर उसको भुगतते हैं, फिर बीज भी बनता है। इस प्रकार से हम सभी एक कर्म की श्रृंखला में फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार से जन जन्मांतर ये चक्र चला रहा है। तो भौतिक जगत में वर्तमान जीवन में हम जो सुख दुख अनुभव कर रहे हैं वो इस प्रकार से हमारे कर्मों के सिद्धांत के अनुसार आता रहता है। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आप सोचो कि आपको एक प्रकार का शरीर मिला है, एक प्रकार का आपका डेस्टिनी है, भाग्य है। अर्थात भाग्य मतलब क्या है, पूर्व जन्म के कार्यों के आधार पर निश्चित हुआ है कि इस समय में आपका 50 साल का जो जीवन है इसमें आपको क्या भौतिक सुख मिलेगा, क्या भौतिक दुख मिलेगा, वो आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार सुनिश्चित है। ओके, अभी आप सोचें कि मैं अपने पुरुषार्थ से जो चाहूं वो प्राप्त कर लूंगा, मुझे भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर लूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि आप लॉज के अंदर बंधे हुए हैं, आप नियमों के अंदर बंधे हुए हैं। इसीलिए जो आपने पूर्व जन्म में कार्य किए हैं उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट से नो। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि आप इस भौतिक जगत में सामान्यतः लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में है इसलिए हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ाएं, खूब अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोड्यूस करें अपने लिए। आज की पूरी आधुनिक सभ्यता का बेसिस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोग पागल हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एवरीबडी इज ट्राइंग टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इज इट नॉट, सब लोग प्रयासरत हैं कैसे स्टैंडर्ड बढ़ाएं, अच्छी डिग्री प्राप्त करो एंड यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं यू कैनॉट इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बियॉन्ड व्हाट यू आर डेस्टिन्ड, आप अपने भाग्य के अधिक अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते, अगर सब कुछ पुरुषार्थ, वर्तमान जीवन के पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पर निर्भर है, दैट्स ऑल राइट, बट नॉट जस्ट इमीडिएट जो आप इस जीवन में कर रहे हैं। भाग्य भी क्या है, भाग्य भी पुरुषार्थ, हमने जो पूर्व जन्म में कार्य किए हैं उसका फल है। भाग्य मतलब क्या है, पूर्व जन्म के किए गए कार्य, तो आपके कार्य पर तो निर्भर है, आप पर निर्भर है, लेकिन जरूरी नहीं कि जस्ट इसी लाइफ के अंदर किए गए कार्य पर निर्भर है, वो आपके पूर्व जन्म के कार्य पर भी निर्भर है, मुख्यतः उस पर निर्भर है। तो इसलिए हमारे शास्त्र में हमको बताया गया है कि ये जो विचार है कि मैं अपनी इच्छा से, अपने कार्य, अपने बल से इस भौतिक, इस जीवन में जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं और इसलिए मुझे खूब मेहनत करनी चाहिए कि मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब धीरू भाई अंबानी की तरह बनाऊं, खूब मेहनत करूं और उससे वो संभव है, ऐसा सोचना ही गलत है, यू कैन नॉट डू दैट। अगर ऐसा होता तो आप देखिए तो पुरुषार्थ सभी लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग धीरू भाई अंबानी से ही बहुत ज्यादा लोग हैं जो ज्यादा अच्छा प्रयास किए, लेकिन सब तो धीरू भाई नहीं बन सकते, सब तो बिल गेट्स नहीं बन सकते, एक ही क्लास के अंदर सब लोग स्टडी करते हैं और कई बार कई लोग ज्यादा अच्छा स्टडी करते हैं लेकिन परिणाम सबके अलग अलग आते हैं और इसको देख के हम कंफ्यूज जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, मेहनत मैंने ज्यादा की लेकिन ऐसा क्यों हुआ, दिस कंफ्यूज अस। तो हमारे शास्त्र हमको गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भौतिक सुख दुख है वो केवल इस जीवन के पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं है, आपके पूर्व जन्म में किए गए कार्यों पर मुख्यतः निर्भर है। इसलिए आप ये मत सोचो कि इस जीवन के अंदर आप तुरंत जो मिलने वाला भौतिक सुख दुख है उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ नहीं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं इसी जीवन के अंदर। अगर आप आज से प्रयास शुरू करेंगे तो धीरे 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 मे बी नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट लाइफ आप अपने को भाग्य को चेंज कर सकते हैं। तो मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, दिस इज राइट। आदमी अपने भाग्य का बनाने वाला है, राइट, दैट इज राइट, सो इट्स इन योर हैंड। लेकिन आप ये सोचें कि इमीडिएटली मैं अपना जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर आपको अपना भाग्य चेंज करना है, भविष्य चेंज करना है, तो आप इस जीवन से प्रयास शुरू कीजिए, कार्य शुरू कीजिए, नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार समझ करके अपने मन माए ढंग से करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप कार्य तो ऐसा कर रहे हैं जी, आपको बनना चाहिए कुत्ता बिल्ली, और आप सोचें मेरी इच्छा है बनने की राजा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों के बियॉन्ड नहीं है, वी आर अंडर द लॉज। लेकिन ये संभव है इफ यू नो द लॉज, अगर आप ये नियम जाने तो आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में शास्त्र के द्वारा हमको जानने को मिलता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका है, सबसे ऊपर की योनि कौन सी है, बेस्ट फैसिलिटीज, लॉर्ड ब्रह्मा। हम सोचते हैं अमेरिका में सबसे हाईएस्ट लेवल है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, लेकिन एक्चुअली अगर हम स्वर्ग लोकों का वर्णन सुने तो स्वर्ग लोकों में भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके कंपैरिजन में अमेरिका नथिंग। तो स्वर्ग लोकों में बहुत बड़ी आयु है, और अमेरिका में तो लोगों को फिर भी काफी काम करना पड़ता है, इंडियंस जैसे काम नहीं करना पड़ता है, फिर भी बहुत काम करना पड़ता है। बट इन स्वर्ग लोक में वर्णन हम सुनते हैं बहुत कम परिश्रम से, वहां भी काम करना पड़ता है, बहुत कम कार्य से, बहुत अच्छे जीवन और बहुत खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत ऐसा सुख है। तो बेसिकली जो भौतिक सुख है उसको चार वैरायटी में डिवाइड किया गया है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार बेसिक कैटेगरीज हैं भौतिक सुख की। तो इन चारों की फैसिलिटीज स्वर्ग लोक में बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा की योनि जो है वो उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक है। तो शास्त्र के अंदर निर्देश है कि आप कैसे स्वर्ग लोग जा सकते हैं, आप कैसे ब्रह्म लोग जा सकते हैं, वो वर्णन है। तो अगर आप इस जीवन से प्रारंभ करें उसके अनुसार चलना तो संभव है आने वाले जीवनों में आप उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्राप्त कर सकते हैं। इन दिस वे यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, आप अपने भाग्य के बनाने वाले। लेकिन भाग्य के बनाने वाले मतलब भाग्य काम करता है, आप आज जो भाग्य बनाएंगे नेक्स्ट लाइफ में उसको भुगतेंगे, करेक्ट। तो पुरुषार्थ और भाग्य में लड़ाई नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, आपके कार्य करने से आपका भाग्य, भाग्य मीन्स व्हाट इज डेस्टिन्ड बाय योर एक्शन। लेकिन क्योंकि एक्शन की श्रृंखला लंबी है, वो केवल इस शरीर के एक्शन से संबंधित नहीं है, वो अनेक अनेक शरीरों के अंदर जो हमने कार्य किया उस सब पर निर्भर है। इसीलिए यह सोचना कि वर्तमान शरीर के अंतर्गत ही हम जो कार्य कर रहे हैं वही हमारे फलों का कारण है, यह गलत है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, सब क्लियर हो रहा है? तो हम अपने भाग्य के निर्धारण करने वाले हैं। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है, आधुनिक ट्रेंड, वो क्या है कि हम भगवान के नियमों का उल्लंघन करके अपनी मन मर्जी से हम अपना भाग्य बनाएंगे। भगवान यदि बोलते हैं शास्त्र में कि ऐसा करने से आपको भौतिक सुख मिलेगा, हम उसको उल्टा जाकर के हम भौतिक सुख लेके दिखाएंगे। वो हमारी आज की मेंटेलिटी, लेट्स सी वेयर इज गॉड, वी विल गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर एंड वी विल बी हैप्पी। तो ये है रावण की पॉलिसी। रावण ने क्या इच्छा किया था, क्या प्रयास किया था कि शास्त्र में तो बताया गया कि स्वर्ग लोक में जाना है तो पुण्य कर्म करना पड़ेगा। पुण्य कर्म, अभी रावण जो राक्षस लोग हैं वो क्या पुण्य कर्म, उनको तो हमेशा पाप कर्म ही करना है। तो रावण ने बोला कि रावण मतलब राक्षस, वो क्या प्रवृत्ति है कि भगवान कोई नहीं है, सबसे बड़े हम हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, पुण्य कर्म करके नहीं जाएंगे स्वर्ग में, मैं यहीं से एक सीढ़ी बनाऊंगा स्वर्ग लोग जाने की, और सब लोग जिसको जाना है जाओ स्वर्ग में बिना पुण्य कर्म किए। एग्जैक्टली यही मेंटेलिटी हमारी आज की है कि चंद्रमा पे जाना है ना, शास्त्र के अनुसार मत चलो, उसमें वो जरूरत नहीं है, हम अपना स्पेसशिप बनाएंगे अपने हिसाब से, वी कैन गो टू मून, चंद्रमा भी एक स्वर्ग लोक है। तो वैज्ञानिकगण क्या प्रयास कर रहे हैं, वो कभी भगवत गीता का आधार, शास्त्रों का आधार पर सुनने के तैयार नहीं है कि भगवान के कुछ नियम है। अभी बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, क्या चल रहा है, बिग बैंग, $9 बिलियन ऑलरेडी स्पेंट, $9 बिलियन खर्च किए आ चुके हैं, क्या कि सृष्टिकर्ता भगवान क्या सृष्टि किए, हम खुद जान लेंगे सृष्टि अपने आप हुई है, वो कैसे बिग बैंग से हुई है, फिर ऐसे ही हम बिग बैंग करेंगे और एक और सृष्टि बनाएंगे, दैट इज बेसिकली देयर आइडिया, स्मॉल बिग बैंग, वी विल मेक ए स्मॉल बिग बैंग, और हम लोग स्टडी करके पता लगा लेंगे कैसे सृष्टि, क्योंकि भगवान का यार तो कोई है नहीं, कोई ऐसा नहीं कोई नियम है, कोई भगवान के नियम है, बट दे आर जस्ट फिजिकल लॉज, केवल भौतिक नियम है, और भौतिक नियम तो आप स्टडी करके उनको पता लगा लो, एंड देन यू कैन कंट्रोल देम एज यू वॉन्ट, ये उनका आइडिया है, यानी वही रावण की पॉलिसी है कि हम भगवान के आदेश का वो कुछ नहीं है, हम अपने हिसाब से नियम बनाएंगे, हम उसको समझ करके वी विल मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, और हम लोग डायरेक्ट जाएंगे उस पर। तो आधुनिक सभ्यता में हम सब ये जो इकोनॉमी डेवलपमेंट कर रहे हैं ये किस आधार पर कर रहे हैं, अपने बलबूते पर करेंगे, जैसे बारिश अभी हम देख रहे हैं, बारिश कम हो रही है धीरे धीरे, सब लोग कम हो रही या अनटाइमली हो रही है, कहीं पर तो बाढ़ आ रही है और कहीं पर बारिश की बहुत प्रॉब्लम है। आप अगर अपने पिताजी से दादाजी से पूछिए तो आपको बताएंगे कि धीरे धीरे जैसा समय बीत रहा है सब जगह पूरे जगह बारिश धीरे धीरे कम हो रही है, कुएं सूखते जा रहे हैं, आप कभी गांव में जाइए तो जो कुएं हैं जहां पर पानी था अभी नहीं, अभी 100 फुट 100 150 फीट नीचे पानी है, ये कॉमन एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे पानी कमी होती जा रही है, साइंटिस्ट लोगों का भी ये अनुभव है, मतलब उनकी स्टडी है। तो लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है पानी कम हो रहा है तो हम नहर बनाएंगे, हम नर्मदा का पानी साबरमती में ले आएंगे, फिर क्या बारिश की कमी रह जाएगी, देखो हम खुद पानी, हम वी विल क्रिएट, जो भी प्रकृति हमको प्रकृति के नियम उल्टे चल रहे हैं, लेकिन हम इतने बुद्धिमान शक्तिशाली हैं कि हम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। बारिश नहीं होगी तो उसका भी ट्रायल चल रहा है, क्या है, आर्टिफिशियल रेन्स, भगवान भगवान कौन है बारिश नहीं देगा, हम बारिश करवाएंगे अपने आप, हम आर्टिफिशियल रेन्स लेके आएंगे, लेकिन आज तक अभी तक संभव नहीं हो पाया आर्टिफिशियल रेन्स लाने में। और नहरें खुदवा रहे हैं तो नर्मदा के पानी यहाँ ला रहे हैं, लेकिन नहरों में पानी तभी आएगा ना जब बारिश होगी, नहीं तो नहर क्या कर लेंगे, नहर खुदवा के पैसा भी अपने ऊपर आ जाएगा, वो भी बोझ हो जाएगा अगर पानी नहीं होगा तो। एनीवे आदमी की मेंटेलिटी क्या है, स्पेशली इन द मॉडर्न एज, टू नेग्लेक्ट लॉज ऑफ गॉड, ये उसकी मेंटेलिटी है, यानी कि पूरा रुझान इस तरफ है कि हम अपने आप अपने भाग्य को बना सकते हैं, इन द सेंस कि हम कोई एक सुप्रीम पर्सन है भगवान, उसके नियमों को उल्लंघन करके भी अपने आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन वो कभी संभव नहीं हुआ है और ना तो कभी संभव होगा। तो हमारे शास्त्र हमको मार्गदर्शन देते हैं कि आप अपना भाग्य बना सकते हैं, यू कैन डू, बट यू हैव टू फॉलो द लॉज एज गिवन बाय गॉड, ठीक है। तो अभी आप यदि लॉज फॉलो करें तो आप जो है ब्रह्म योनि प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वर्ग लोग जा सकते हैं, आप बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, अगर आप कई कई जन्मों के बाद ऐसा कर भी लें, अभी से शुरू करें पुण्य कर्म करना, शास्त्र के अनुसार चलना, तो धीरे 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 कई जन्मों के बाद आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर भी लें तो भी क्या फायदा, क्यों भाई फायदा क्यों नहीं, विल बी मोर हैप्पी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स मोर हैप्पीनेस, सही बात है ना, इसलिए तो हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा सुखी होंगे, अल्टीमेटली तो हम सब क्या चाहते हैं, ज्यादा सुखी होना चाहते हैं, लेकिन क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने से स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस भी इंप्रूव होता है, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, सोच के बताइए, कौन बताएंगे, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने से स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस भी इंप्रूव होता है, नहीं होता, उनका विचार है नहीं होता, आप ऐसे किसी का विचार है कि होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप अगर ऐसा मान रहे हैं तो फिर ये सब लोग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं सब मूर्ख हैं। एनीबॉडी हु सेज होता है, अच्छा इन सम सिचुएशंस यस पीपल आर मेंटालिटी है चाहते हैं, लेकिन क्या ज्यादा पैसा होने से ज्यादा सुखी होते हैं, ये प्रश्न है। ओके तो आधारभूत सुख का भौतिक, जब तक ये शरीर है इस भौतिक जगत में, हैप्पीनेस का मीडियम क्या है? ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। बेसिकली हैप्पीनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम, सुख जो है वो ये चार जो क्रियाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं शरीर की, उन चार शारीरिक आवश्यकताओं के माध्यम से हम सुख का अनुभव करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग। तो यदि कोई आदमी है, उसकी खुराक चार रोटी है, उसकी पगार 2000 रुपए है, तो 20,000 पगार होने से क्या 10 times, तो क्या उसकी खुराक जो वो क्या 10 गुना बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ सकती। ठीक है, अगर 10 गुना चपाती खाएगा तो क्या हो जाएगा? इनडाइजेशन एंड ही विल सफर अलॉट। ठीक है, अभी सोना, सोने के लिए हमको चाहिए एक 6 feet by 3 feet की जगह चाहिए, तो क्या 10 गुना हमारी पगार बढ़ने से जो वो सोने का सुख है क्या वो 10 गुना बढ़ने वाला है, होने वाला है? सर नहीं होने वाला है। आप दाल चपाती खाते हैं, आप स्टील की प्लेट में खा रहे हैं जब आपकी पगार 2000 है, और फिर आप 5-star होटल में जाकर के दाल चपाती खा रहे हैं, क्या दाल चपाती से मिलने वाला सुख 5-star होटल में ज्यादा टेस्टी होता है वही दाल चपाती? ऐसा है क्या? दाल चपाती का टेस्ट पीतल की स्टील की प्लेट में खा रहे हैं और एक सोने की प्लेट में खा रहे हैं, तो क्या दोनों के टेस्ट में अंतर होगा? दोनों से मिलने वाला जो सुख है, वो खाने से मिलने वाला जो टेस्ट सेंसेशन सुख है, उसमें अंतर होगा? होगा नहीं होगा? हाँ, तो ये थोड़ा रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, बट थिंक अबाउट इट। अभी एक सुअर है, तो सुअर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मनुष्य का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग है इन टर्म्स ऑफ खाना। उसका स्टैंडर्ड क्या है? सुअर क्या खाता है? मल खाता है, और आदमी जो है वो घी दाल चपाती या जो भी है वो खाता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि सुअर को वो जो उसका खाना खाने में जो सुख मिलता है, हमको अपना खाना खाने में ज्यादा सुख मिलता है उससे? क्या हम कह सकते हैं ऐसा? नो, उसके बॉडी के अनुसार ही गेट्स द सेम हैप्पीनेस इन ईटिंग एज वी गेट। जानवर जो है वो रोड पर सो जाते हैं, और हम लोग हो सकता है कुछ पॉश बंगलोज में सोते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमको जो बंगले में सोने का जो सुख है, और वो जो कुत्ते को सड़क पे सोने हैं, वो उससे हम ज्यादा सुखी हैं सोने के मामले में? नो। तो ये जो हमारी जो सोच है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग होने से स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस भी चेंज होता है, एक्चुअली ये गलत है। स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस जहां तक आहार निद्रा भय मैथुन जो आधारभूत चार चीजें हैं, उससे जो मिलने वाला सुख है वो सभी के लिए समान है, वो सभी के लिए समान है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बॉडी के अनुसार अलग अलग है, किसी का खाना एक है, किसी का दूसरा खाना है, लेकिन उस शरीर के लिए वही खाना वही स्वाद देगा जितना दूसरा शरीर दूसरे चीज को खाने मिलेगा। करेक्ट, उसमें अंतर नहीं होने वाला। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस चेंज नहीं होता है। केवल हम सोचते हैं कि ओ ये ऐसे खा रहा है, कितना दुखी है। जैसे जो लोग कभी देखते हैं कि कोई लेबरर जो है वो बहुत दिन में बहुत काम किया है, बहुत वजन उठाया है, कंस्ट्रक्शन लेबर, हाँ बहुत मेहनत किया है, तो एक अमीर आदमी वो सोचेगा वो बेचारा कितना मेहनत करके अभी देखो क्या खा रहा है, वो कुछ सूखी चपाती और कुछ बहुत कोर्स राइस, राइस के अलग अलग वैरायटी है, बासमती भी है तो बहुत सिंपल राइस भी है, तो अमीर आदमी सोच रहा है ये बेचारा कितना दुखी है, ये कितना ऐसा राइस खा रहा है। लेकिन क्या वो जो आदमी वो जो राइस खा रहा है कोर्स राइस, और जो एक अमीर आदमी बासमती खा रहा है, क्या आप आर यू श्योर कि ही इज एंजॉइंग दैट बासमती मोर देन दैट पर्सन जो कोर्स राइस खा रहा है? आप बासमती खा रहे लेकिन पेट में भूख नहीं है, तो क्या वो बासमती राइस टेस्टी लगेगा आपको? और वो जो लेबरर है वो बहुत मेहनत किया है और खूब जम के उसको भूख लगा है, और उसमें वो जो सिंपल राइस कोर्स राइस खा रहा है वो उसको ज्यादा टेस्टी लगेगा वो बासमती राइस। एम आई रॉन्ग? हाँ, तो यानी कि वो दिखावा हुआ, वो मेंटल स्पेकुलेशन हुआ। इट्स मेंटल प्लेटफॉर्म। तो आप मन में सोच रहे हैं कि आई एम मोर हैप्पी बाय दिस। तत्व की दर्शी से दर्शन से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स द सेम हैप्पीनेस। आप जो है वो दाल चावल कहीं भी खा रहे हैं, वो स्टील की प्लेट में खा रहे हैं, सोनिक प्लेट में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज सेम टेस्ट। बट यू आर थिंकिंग व्हेन आई एम ईटिंग इन ए, जब मैं सोनी की प्लेट में खा रहा हूं आई एम बेटर, ये ज्यादा टेस्टी है। इट इज यू आर थिंकिंग बट एक्चुअली इट्स द सेम टेस्ट, करेक्ट? सो दैट इज द लेसन कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आपका स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस नहीं बढ़ता है, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं, इसलिए ये रिलेटिव है। केवल आप सोच रहे हैं कि ऐसा है, वास्तव में ये रियलिटी नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हैं। यू थिंक लाइक दैट कि ईटिंग इन ए गोल्डन प्लेट इज मोर टेस्टियर देन ईटिंग इन ए स्टील प्लेट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये एक और सिद्धांत हमने देखा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस इंप्रूव नहीं होता है, रादर सबके लिए जो बेसिक स्टैंडर्ड है ईटिंग स्लीपिंग मेडिटिंग इज सेम, मैं इट्स सेम फॉर एवरी लिविंग एनिटी, अदर ह्यूमन बीइंग और कॉकरोच और एनीबडी, इट्स सेम, इट्स नॉट डिफरेंट। ईटिंग ऑल दीज फोर थिंग्स, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, इसके संबंध में जो सुख है वो सबके लिए एक समान है। तो पहली चीज, आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत अपने इसी समय के पुरुषार्थ से कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ नेचर। लेकिन कह रहे हैं कि करने पर भी क्या फायदा हो, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस विल नॉट इंप्रूव बाय दैट, उससे आपका सुख जो मिलना है वो नहीं बढ़ेगा। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी मेहनत से सुखों को बढ़ाएं और दुख ना लें, दुख को कम करें। लेकिन जिस प्रकार से आप दुखों के लिए प्रयास नहीं करते हैं लेकिन फिर भी दुख आते हैं, उसी प्रकार से भाग्य के अनुसार जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उसके अनुसार आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद भी सुख जो है वो तो उतना ही रहना है, तो फिर उसके लिए हम इतना प्रयास क्यों करें? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए हम इतना प्रयास क्यों करें, इतना समय बर्बाद क्यों करें? एक तो आप उसको इस जीवन में तुरंत बदल नहीं सकते, दूसरा यदि आगे आने वाले जीवनों में बदलेंगे भी तो भी जो उससे मिलने वाला सुख है जब तक आप इस भौतिक जगत में तब तक तो वो उतना ही रहने वाला है, और भौतिक दुख भी आपको मिलने वाला है। आप प्रयास करेंगे केवल सुख का लेकिन साथ साथ भौतिक दुख भी मिलेगा, क्योंकि लॉज के अनुसार एक शरीर में कुछ प्रकार का भौतिक सुख है तो कुछ प्रकार का भौतिक दुख है। जैसे यदि आदमी को पानी में रहना पड़े 2 घंटे 3 घंटे तो उसको सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। लेकिन मछली को क्या होगा? सुख होगा, इट विल वेरी हैप्पी, करेक्ट? तो भगवद्गीता में बताते हैं भगवान, मात्र स्पर्शा सुखोन्ते शीतोष्ण सुख दुख दा आगम पायनो नित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। ये जो भौतिक सुख दुख है वो रिलेटिव है, एक शरीर में एक परिस्थिति में एक चीज सुख लग रही है और दूसरी परिस्थिति में दुख लग रही है। अभी ये फैन है अच्छा लग रहा है, अभी 3 महीने बाद क्या होगा? ये फैन चलाएगा तो क्या होगा? विल बी अनहैप्पी, अरे फैन बंद करो ठंड लग रही है, और अभी फैन बंद है तो दुख हो रहा है। सेम फैन सेम थिंग, वो एक परिस्थिति में सुख लग रहा है और एक परिस्थिति में दुख लग रहा है। तो यानी कि ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये शरीर और सिचुएशन के अनुसार अलग अलग बदल रहा है। तो इसीलिए ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो कंसेप्ट है, ये रिलेटिव कंसेप्ट है, ये वास्तविकता नहीं है। तो हमारा वास्तविक सुख और दुख क्या है ये समझना है। ये जो भौतिक जगत में हम सुख और दुख अनुभव कर रहे हैं, ये तो मात्र इस शरीर के कारण है, और शरीर के अनुसार जो शरीर हमको मिला है, जो भाग्य के अनुसार है, उसके अनुसार निश्चित है, आप उसको इस समय बदल नहीं सकते। तो ये जो भौतिक सुख दुख हम इसको परिभाषा कर रहे हैं, ये हायर स्टैंडर्ड है, ये लोअर स्टैंडर्ड है, ये दोनों ही आत्मा की दृष्टि से दोनों ही लोअर स्टैंडर्ड है, ये दोनों ही दुख हैं केवल। भद्र अभद्र सकल समान, इस भौतिक जगत में जो भी हम अच्छा और बुरा कह रहे हैं वो सब बेकार है, वो सब अभद्र है, आत्मा के लिए सभी दुख है। क्यों? तो अगर हमको मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए ब्रह्मा की योनि, तो क्या वो वास्तव में सुख है हमारे लिए, आत्मा के लिए? तो वो विषय समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक तो हम एक्सपीरियंस ही नहीं कि, हम जानते ही नहीं कि आत्मा का सुख किसमें। हम तो सोच रहे हैं शरीर के सुख में ही वही मेरा सुख है और शरीर के दुख ही मेरा दुख है। लेकिन शास्त्र हमको गाइडेंस दे रहे हैं कि क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो शरीर के सुख दुख वास्तव में हमारे सुख दुख नहीं है, लेकिन शरीर के सुख और दुख दोनों ही आत्मा के लिए दुख है। जैसे एक आदमी प्रिजन हाउस में है, ओके, वो थर्ड क्लास प्रिजन हाउस में है, ओके, वहां पर उसको रहने के लिए जगह दी है 4 फुट बाई 4 फुट की, ओके। अभी उसका प्रमोशन हो गया, कोई पीछे से उसका बैकअप आ गया, अरे ये तो इसका तो मामा वीआईपी है, ओके, ट्रांसफर हिम टू ए क्लास जेल। अब उसको ए क्लास जेल में कर दिया, तो क्या वो कैदी सुखी होगा? क्या आप कहेंगे यस नाउ अभी वो कैदी बड़ा सुखी है? कहेंगे आप क्या कैदी सुखी है? क्या सुखी नहीं है, अभी वो टीवी देख सकता है, अभी वो फ्रिज है उसके पास, तो वो सुखी है कैदी। तो कैदी वास्तव में उसको कैदी नहीं होना चाहिए, तो उसका वास्तविक सुख है कि कैसे बाहर निकलना। और जब तक वो कैद में है तब तक वो भले ही वो ए क्लास जेल में हो कि थर्ड क्लास जेल में हो, क्योंकि वो कैदी है तो अल्टीमेटली तो दुखी है ना। तो उसी प्रकार से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है सच्चिदानंद स्थिति में रहना, ना जन्म ना मरण ना मृत्यु ना व्याधि, नित्य भगवान के साथ नित्य आनंद में रहना, यह हमारी स्वाभाविक स्थिति है। तो अगर हम ब्रह्मा की ब्रह्मा भी बन जाएं, तो भी तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। मनुष्य से रिलेटिवली वी आर बेटर, बट दिस इज जस्ट रिलेटिव। आत्मा की दृष्टि, आत्मा के लिए तो वो भी कैदी है, वो ए क्लास जेल है, वो थर्ड क्लास जेल है, तो थोड़ा डिफरेंस है, ओके, लिटिल डिफरेंस, बट नॉट रियल डिफरेंस, वास्तव में डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आत्मा कैदी ए क्लास जेल में भी सुखी नहीं हो सकता, थर्ड क्लास जेल में सुखी कैसे सुखी हो सकता है? जब वो जेल से बाहर निकलेगा तभी सुखी हो सकता है, करेक्ट। कोई आदमी जेल में, आप उसको सांत्वना दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कराया था थर्ड फर्स्ट क्लास जेल में, ठीक है, अभी तो ठीक हो ना? बोले ये क्या बात कर रहे हो, अरे मुझे बाहर निकालो, ए क्लास जेल में आने से मुझे क्या सुख मिले? तो वो समझना है, आवर रियल हैप्पीनेस लाइज वेयर। हमारा वास्तविक सुख इस भौतिक जगत के सुख में है ही नहीं, इस शरीर के मिलने वाले सुखों से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। सवई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा कैसे सुप्रसिद्ध होगी, संपूर्ण रूप से संतुष्ट आत्मा कब होगी? जब हम भगवान की सेवा में रहते हैं तब आत्मा की संपूर्ण संतुष्टि होती है। तो भौतिक सुख मिलने से आत्मा को संतुष्टि नहीं होती है, वो किसको संतुष्टि होती है? शरीर को संतुष्टि होती है। और क्योंकि हम अभी अपने को शरीर माने हुए हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम शरीर नहीं है, इसलिए वास्तव में हमें वो संपूर्ण संतुष्टि नहीं कर सकता। और वैसे भी भौतिक सुख तो क्षणिक होते हैं, हम आत्मा है, हमको नित्य सुख चाहिए, और शारीरिक सुख क्षणिक है क्योंकि शरीर भी क्षणिक है, इसलिए ये क्षणिक सुख ना तो हमें इसलिए संतुष्ट कर सकते हैं क्योंकि वो क्षणिक है, और इसलिए भी क्योंकि उनकी क्वालिटी अलग है, उनकी क्वालिटी अलग है। जैसे उदाहरण हम हर बार देते हैं, कार को चलाने के लिए चाहिए क्या? पेट्रोल। लेकिन जो कार को चलाने वाला ड्राइवर है उसको पेट्रोल नहीं चाहिए, उसको खाने को चाहिए। दोनों की खुराक अलग अलग है। तो उसी प्रकार से आत्मा की संतुष्टि ये जड़ चीजों में नहीं हो सकती है। ओके, आप खा रहे हैं गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन क्या है? इट्स ए डेड मैटर। लेकिन आत्मा जीवित चीज है, जीवन है, जीवित है। तो क्या आत्मा गुलाब जामुन खाने से संतुष्ट हो सकता है? तो लगता तो है, हाँ गुलाब जामुन खाते हैं तो वी फील नाइस। लेकिन आप सोचिए, कोई एक दूसरा प्राणी है, कुत्ता है, तो क्या उसको भी गुलाब जामुन खाने में, उसको तो हड्डी मिलेगी जब, तो वो हड्डी चबाने में ज्यादा उसको आनंद आएगा। और आदमी को ही गुलाब जामुन है, लेकिन एक आदमी को न्यूज मिला कि उसका कोई नियर डियर एक्सपायर हो गया, अब आप उसके सामने प्लेट लेके आओ गुलाब जामुन, फर्स्ट क्लास खाना, तो विल ही बी एबल टू एंजॉय दैट गुलाब जामुन? क्यों है? अगर हैप्पीनेस लाइज इन गुलाब जामुन, इफ द रियल टेस्ट लाइज इन गुलाब जामुन, देन इट मस्ट ऑलवेज बी टेस्टी। तो हमेशा टेस्टी लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता है। इसका मतलब रियल टेस्ट गुलाब जामुन में नहीं है, इट इज लाइंग समवेयर एल्स, तो कहां है वो टेस्ट? क्यों गुलाब जामुन टेस्टी लगता है एक कंडीशन में, एक नहीं लगता? दैट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। एक जीवा को एक चीज टेस्ट दे रही है, दूसरी जीवा को दूसरी चीज टेस्ट दे रही है। सेम एग्जाम्पल है, हॉग एंड ए ह्यूमन बींग। फॉर अ हॉग स्टूल इज अपियरिंग टेस्टी, विच वी कैनॉट इवन थिंक ऑफ। शी वॉज मेकिंग हर फेस लाइक व्हेन आई टॉक्ड ऑफ स्टूल, सो वी फील इट। हम तो उसको एकदम से सुनते ही, हॉग इज एंजॉइंग इट। तो कहां है टेस्ट? अगर वो उस पदार्थ में होता तो सबको टेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता है, तो टेस्ट कहां है? तो टेस्ट जो हमें इस समय जो हमें आनंद मिल रहा है भौतिक, वो वास्तव में भगवान की माया शक्ति के द्वारा अरेंज होता है। कि आपको एक प्रकार का शरीर दिया जाता है, और उस प्रकार के शरीर के संपर्क में जब वो इंद्रिय भोग का विषय आता है, जब मनुष्य की जिह्वा के संपर्क में गुलाब जामुन आता है, तब भगवान की शक्ति के द्वारा जो आत्मा उस शरीर में बैठी है, इट परसीव्स इट एज टेस्टी। और भगवान की माया शक्ति के द्वारा जो आत्मा सुअर के शरीर में बैठा है, जब उसकी टंग कम्स इन कॉन्टेक्ट विद स्टूल, दैट इट फील्स टेस्टी। सो अल्टीमेटली इट इज कंट्रोल्ड बाई माया एनर्जी, भगवान की शक्ति के द्वारा वो निर्धारित हो रहा है। लेकिन वो आत्मा का सुख नहीं है, ना तो गुलाब जामुन खाना और ना ही उसके लिए स्टूल खाना। वो शरीर का संबंध में भगवान के इस माया शक्ति के द्वारा वो कॉन्टेक्ट में आने से, जो आत्मा इस समय उस शरीर के अंडर में है, कंट्रोल में है, धारण किए हुए है, उसको वो अपना सुख मानता है, भ्रमित है वो। इट्स इल्यूजन, इट्स इल्यूजरी प्लेजर। तो ये भौतिक जगत में जो हम भौतिक सुख अनुभव कर रहे हैं, दिस आर इल्यूजरी प्लेजर। लेकिन हमारा अपना एक रियल प्लेजर है, आत्मा का अपना एक वास्तविक सुख है, जो हमने सामान्य रूप से बहुत बहुत समय से अनुभव नहीं किया है, कई कई जन्म जन्मांतर से अनुभव नहीं किया है। कई कई जन्मांतर से हमने क्या अनुभव किया है? केवल वही भ्रमित सुख अनुभव किया है। अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार का भ्रमित सुख, जिस प्रकार की योनि उस प्रकार की योनि का भ्रमित सुख अनुभव किया है। लेकिन कई कई जन्म जन्मांतर से हमने अपना वास्तविक सुख अनुभव नहीं किया है, और यही कारण है कि हम कुछ भी प्राप्त करने पर अंततः अंदर से खालीपन, असंतुष्टि अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि वाह, जब मेरे को ये स्टेज में प्राप्त कर लूंगा, व्हेन आई बिकम ए डॉक्टर और इंजीनियर, आई विल बी सो हैप्पी। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं, अगेन सेम अनहैप्पीनेस, सेम एम्प्टीनेस। अरे तो नेक्स्ट, अभी और आगे क्या? ओ मे बी कुछ थोड़ा सा माई कैलकुलेशन वॉज मिस्टेक, कुछ गड़बड़ हुआ कैलकुलेशन, मे बी आई नीड दिस। एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं ना, यू नीड वॉशिंग मशीन, वीडियो कॉन वॉशिंग मशीन, यू नीड दिस, आपको ये मिला। अच्छा, ये आई नीडेड दिस, ओ आई वॉज नॉट नोइंग, मेरे को पता नहीं था, नाउ दे टोल्ड मी आई नीड दिस, ओके। सो यू गेट अ वॉशिंग मशीन एंड दे शो यू वॉशिंग मशीन, मिलते यू विल हैव ए स्माइल लाइक दिस एंड यू विल फ्लाइंग एंड जंपिंग एंड देन यू गेट अ वॉशिंग मशीन। आप वॉशिंग मशीन ले आते हो, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है आपका, तो क्या आपको यू स्टार्ट फ्लाइंग? नो, वॉशिंग मशीन आफ्टर वन ईयर, आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, इट्स अ वॉशिंग मशीन जस्ट टू वॉश क्लोथ्स, नथिंग एल्स, नथिंग चार्मिंग. तो ये है इल्यूजरी प्लेजर का उदाहरण. तो इस भौतिक जगत में जो भी हम लोग ये सुख अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो जड़ पदार्थ हैं, इसलिए वो आत्माओं कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? एक वॉशिंग मशीन कैसे आत्माओं को संतुष्ट कर सकती है? वॉशिंग मशीन जड़ पदार्थ है और हम जीवित हैं, तो एक वॉशिंग मशीन हमको संतुष्ट नहीं कर सकती, एक गुलाब जामुन हमको संतुष्ट नहीं कर सकता, मर्सिडीज कार हमको संतुष्ट नहीं कर सकती, इंजीनियर डॉक्टर बनना हमको संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब जड़ चीजें हैं, ये सब भौतिक है और हम भौतिक नहीं है, दोनों में मिसमैचिंग है. इसीलिए हम देखते हैं सब कुछ प्राप्त करने पर भी अंततः हम असंतुष्ट हैं. हम जिसको प्राप्त नहीं किए हमें लगता है कि वो प्राप्त करने में संतुष्ट रहेंगे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो प्राप्त कर चुके हैं और फिर भी असंतुष्ट हैं. तो हम क्यों उनसे सीखते नहीं? जब वो लोग वो प्राप्त करके असंतुष्ट हैं, तो हम कैसे उसको प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएंगे? Isn't it illusion? लेकिन हम सोचते हैं नहीं, फिल्म एक्ट्रेस बन के, क्रिकेटर बन के, आई विल बी सो हैप्पी. इतने सारे फिल्म एक्टर्स हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड, दे आर अनहैप्पी. तो आपको क्या, आप कैसे उसको सुख प्राप्त कर लेंगे? इसे कहते हैं इल्यूजरी प्लेजर. इसलिए इसका नाम है माया शक्ति. माया मीन्स अंडर इल्यूजन. तो अंडर इल्यूजन, माया भ्रम के अंतर्गत एक जीव एक प्रकार के शरीर में उपस्थित होकर एक प्रकार के स्थिति को सुख समझता है, एक प्रकार की स्थिति को दुख समझता है. लेकिन वो दोनों ही परिस्थिति उसके लिए दुख की परिस्थिति है, क्योंकि वो दोनों ही परिस्थितियां उसको संतुष्ट नहीं कर सकते. इसलिए आत्मा का यानी हमारा वास्तविक सुख यदि कहीं है, तो वो केवल है भगवान की सेवा में. नाउ अनदर पॉइंट, ठीक है, उस भ्रम का एक और वेरिएशन. आपने भ्रम में सोचा कि यदि मैं ब्रह्मा बन जाऊं, यदि मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर लूं, तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा. इसमें और क्या प्रॉब्लम है? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप हमेशा अमीर के अमीर बने रहेंगे? क्या आप गारंटी दे सकते हैं इस चीज की? नहीं दे सकते. हम क्या देखते हैं इस भौतिक जगत में? हर आदमी ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है. ये साइकिल चलता रहता है. कोई भी आदमी है जो कॉन्स्टेंटली एक ही पोजिशन में नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर तो अल्टीमेटली मरेगा ना. कैसे रह सकते हैं आप इस जीवन में? आप बन गए धीरूभाई अंबानी. अभी धीरूभाई अंबानी किस योनि में, आपको पता है? क्या धीरूभाई अंबानी अगले जीवन में धीरूभाई अंबानी रहेंगे? नहीं रहने वाले, निश्चित रूप से नहीं रहने वाले. तो अगर हम बहुत मेहनत करके, संभव नहीं है, लेकिन अगर आप मान भी लें कि आप बहुत मेहनत करके कई 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 जन्मों के बाद अंबानी बन भी गए, बहुत पायस एक्टिविटीज की, अंबानी छोड़िए ब्रह्मा बन गए, लेकिन ब्रह्मा बनने के बाद भी लॉज ऑफ नेचर इस प्रकार से हैं कि ब्रह्मा के बाद भी फिर साइकिल में आना पड़ेगा, फिर मनुष्य बनना पड़ेगा, फिर सुअर आना पड़ेगा, ये सब होता रहेगा. क्यों? क्योंकि ये नेचर के तीन गुण हैं. कौन कौन से गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. ये तीनों गुणों के द्वारा हम ऊपर नीचे जाते हैं. तो हम स्वर्गलोक में कैसे जाते हैं? ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्था. जो मनुष्य इस जीवन में सत्वगुण को कल्टीवेट करता है, वो आने वाले जीवनों में स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा. ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर की योनि में जाएगा, अच्छी बेटर लाइफ में, स्वर्गलोक में जाएगा. मध्य तिष्ठन्ति भारत राजस. जो राजसी गुणों को कल्टीवेट कर रहा है, वो दोबारे से इसी पृथ्वीलोक पर मनुष्य योनि प्राप्त करेगा. जगन्य गुण वृत्तिस्थो अधोगच्छन्ति तामसा. जो तामसिक गुणों को कल्टीवेट कर रहा है, वो निम्न योनियों को जाएगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाएगा, वो जानवर बनेगा. ओके? तो ये तीनों गुणों के द्वारा हम ऊपर नीचे जाते हैं. तो इस तरह से भाग्य आपके हाथ में है कि मनुष्य जीवन मिलने पर आप चाहे तो आपका गुण, मान लीजिए तमोगुण है, लेकिन आप एजुकेशन के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा आप सत्वगुण कल्टीवेट कर सकते हैं, और सत्वगुण कल्टीवेट करके नेक्स्ट लाइफ में ऊपर जा सकते हैं, स्वर्गलोक में जा सकते हैं. लेकिन समस्या क्या है कि ये तीनों गुणों में हमेशा लड़ाई होती रहती है, जंग चलती रहती है. कभी एक गुण जीत जाता है, तो कभी दूसरा गुण जीत जाता है, कभी फिर तीसरा गुण जीत जाता है. इसलिए कॉन्स्टेंट नहीं रहते हैं. आप सत्वगुण को कल्टीवेट करके स्वर्गलोक में गए, लेकिन फिर तमोगुण हावी हो गया दोबारा. क्या उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है इसका, भगवान श्री कृष्ण की लीला में. तो दो गंधर्व थे, स्वर्गलोक के वासी थे, नल कुबेर और मणिग्रीव. तो स्वर्गलोक में रहते थे, बहुत एंजॉय करते थे. तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे और वो कुछ अप्सराओं के साथ देवर एंजॉय. लेकिन वो एंजॉयमेंट में वो लोग अपना शिष्टाचार भी भूल गए, एक संत आ रहे हैं, देवर निकट और संत आ रहे हैं तो भी ही नेग्लेक्टेड, ही इग्नोर्ड हिम, नारद मुनि को इग्नोर किया, ही वॉज जस्ट फुल्ली एब्जॉर्ब इन एंजॉइंग, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट। तो नारद मुनि ने देखा कि ये जो नल कुबेर हैं, इनको मद चढ़ गया है, बहुत बहुत दिमाग में चढ़ गया है अभी, इनको कैसा शिष्ट व्यवहार क्या है वो भी भूल गए हैं। तो उनको सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए उनको उन्होंने शाप दिया कि वो जो है वृक्ष बन जाएं। तो जो व्यक्ति नग्न रहने के लिए इच्छुक है इस मनुष्य जीवन में, उसको नेक्स्ट लाइफ में विल बिकम ट्रीज। दिस इज लॉ ऑफ कर्म। यस, स्टैंड नेकेड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। यू वांट टू बिकम मॉडल्स, नेकेड मॉडल्स, स्टैंड बी मॉडलिंग फॉर थाउजेंड्स इयर्स। यस, दिस इज लॉज ऑफ नेचर। तो उस प्रकार से उनको वो वृक्ष बनना पड़ा। तो देखिए स्वर्गलोक की स्थिति से भी क्या पेड़ बनना पड़ा। ऐसे एक बार ब्रह्मा को इंद्र को इंद्र की योनि से सुअर बनना पड़ा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। यानी कि लेसन क्या है कि कोई गारंटी नहीं है कि आप अपना स्टैंड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने पर वहीं पर टिके रहेंगे, बल्कि निश्चित है कि आप कभी ना कभी दूसरे गुणों के अंदर में आकर के आप ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको फिर वापस निम्न योनि में आना पड़ेगा। तो फिर क्या फायदा इतना मेहनत, इतना जतन करने से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में। एक तो तुरंत कर नहीं सकते, बहुत मेहनत कर कई कई जन्मों में आप करेंगे तो भी भौतिक जगत में मिलने वाला सुख तो वही रहने वाला है, स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस इंप्रूव नहीं होने वाला है। ब्रह्मा को भी वही है और चींटी को भी वही है, आहार निद्रा भय मैथुन का सुख सबके लिए वही है। और फिर वो स्थिति को भी आप मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए सब एंगल से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने का एंडेवर व्यर्थ है, व्यर्थ है। और अल्टीमेटली क्योंकि ये हमें संतुष्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस तरह से हर एंगल से हमारा अपनी भौतिक स्थिति को इंप्रूव करने का प्रयास अल्टीमेटली विफल है। तो फिर हमें क्या प्रयास करना चाहिए? तस्यैव हेत प्रयतेत कोविदा यम न लभ्यते भ्रमतम ऊपर यथा। ऐसे ऊपर नीचे स्टैंड ऑफ लिविंग इंप्रूव करते हुए आप भ्रमण कर रहे हैं, कभी ब्रह्मा बने, कभी जानवर बने, 84 लाख योनियों में अनेक अनेक बार आप ऐसे भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं अभी मनुष्य जीवन मिलने पर आप उस चीज के लिए प्रयास कीजिए जो ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वास्तव में भाग्य को ऐसे बनाइए, मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, दिस इज द रियल वे टू मेक योर डेस्टिनी, रियल डेस्टिनी। व्हाट इज दैट? कि आप वो चीज प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए इस मनुष्य जीवन में, उस चीज के लिए पुरुषार्थ कीजिए जो ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक उपलब्ध नहीं है। क्या है वो चीज? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी, आत्मा को वास्तविक संतुष्टि जिसमें मिले, अर्थात शाश्वत भगवत धाम में भगवान की सेवा, वो जो लक्ष्य है, वो जो स्तर है, वो उपलब्ध है मनुष्य योनि में, उसको प्राप्त करना संभव है, उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए। तस्यैव हेत प्रयतेत, यू वर्क फॉर दैट गोल। मनुष्य जीवन में हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि हम ना तो ब्रह्मा बनना लक्ष्य है, ना तो अमेरिका जाना लक्ष्य है, वो सब लक्ष्य नहीं। रियल लक्ष्य है कि हम दोबारे इस भौतिक जगत में एक और शरीर धारण ना करें, बल्कि आध्यात्मिक जगत में अपना जो वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप है, स्पिरिचुअल बॉडी है, हम पुनः अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करें, जिस आध्यात्मिक शरीर में हम शाश्वत भगवान के सानिध्य में शाश्वत आनंदमय जीवन अनुभव कर सकते हैं। शास्त्र हम कह रहे हैं उस चीज के लिए प्रयास करो, वही एकमात्र यूजफुल चीज है। मनुष्य जीवन में यदि कोई चीज प्रयास करने योग्य है तो केवल वही एकमात्र चीज है। लेकिन आप देखिए आज इस ज्ञान के लुप्त होने के कारण हर व्यक्ति, हर बच्चा स्कूल में जा रहा है, पूरा समाज हमें क्या सिखा रहा है? कोई बता रहा है इस चीज के लिए प्रयास करना, भगवान के सानिध्य में आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए निकलने के लिए प्रयास करने के लिए कोई हमें इंस्पायर कर रहा है? Nobody is inspiring। और यदि आप ऐसा करने लगेंगे, भगवद्गीता पढ़ने लगेंगे, सब लोग आपको रोकेंगे, ये क्या अभी ये कोई उम्र है तुम्हारे भगवद्गीता पढ़ने की? हाँ, ये तो बुढ़ा होने पर जब और कुछ नहीं कर सकते, जब एंजॉय नहीं कर सकते, तब जाकर के पढ़ना, जब फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो. आप ऐसी सी बात किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे ये क्या तुम महात्मा बन गए, साधु बन गए, क्या ये सब अच्छा नहीं है. आपको रोकेंगे, सब तरफ से डिस्करेज करेंगे. लेकिन यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप समझिए कि क्या चीज करना चाहिए आपको. आपको वो चीज करनी चाहिए जो कभी संभव नहीं है, होपिंग अगेंस्ट द होप, या वो चीज करनी चाहिए वेयर देयर इज ऑल होप, जहां सब कुछ आशा है. तो एक रास्ता है अपनी मेटीरियल लाइफ को इंप्रूव करने का प्रयास करो, और एक है मेटीरियल लाइफ छोड़ करके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को गेन प्राप्त करने का प्रयास करो. दो ऑप्शन आपके पास है मनुष्य योनि में, जानवर में नहीं है ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन जानवर में नहीं है. इसलिए क्या कहा गया है, लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, अनेक 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 जन्मों के बाद में आपको ये सुदुर्लभम बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है. लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान, बहु बहु जन्मों के बाद. क्या मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपि इह धीरा, ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई आपको, वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है, जो अर्थदम बहुत यूजफुल है. अनित्यमपि, हालांकि अनित्य है, जानवरों की योनि की तरह से ये मनुष्य योनि भी अनित्य है, लेकिन यूजफुल है. कैसे यूजफुल है, तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्युम यावत. कैसे है वो यूजफुल, कि जब तक ये जो शरीर है जो गिरने वाला है, निश्चित है कि मरेगा, लेकिन जब तक नहीं मरा है तब तक आप इसको यूज कर लो. किस चीज के लिए, निश्रेयसाय विषय खलु सर्वत्र स्यात्. निश्रेयसाय, निश्रेयसाय मीन्स मोक्ष, अल्टीमेट बेनिफिट के लिए. क्या है वो अल्टीमेट बेनिफिट, जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए निकलकर भगवान के सानिध्य में पहुंचने के लिए आप इस मनुष्य जीवन को यूज कर लो. ये जब तक शरीर टिका है तब तक, बूढ़ा होने से पहले जब तक शक्ति है, जब तक आप ये भगवद गीता पढ़ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तब से पहले आप ये कर लो. और लोग क्या बोल रहे हैं, बूढ़ा होने पर भगवद गीता पढ़ो. अरे बूढ़ा होने पर भगवद गीता पढ़, ना तो पढ़ने के लिए आंखें होंगी, ना सुनने के लिए कान, और ना उसको फॉलो करने के लिए शक्ति. बस बैड पेपर के चिल्लाते रहो तो क्या उस समय आप भगवद गीता को यूज कर पाएंगे. तो इट्स अ रॉन्ग मैसेज गिवन, रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस. बल्कि प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञा, 5 साल की उम्र से शुरू करो पढ़ना भगवद गीता, ना कि 55 साल के बूढ़ा होने पर. और आजकल देखिए, मैं कल एक आदमी से बात कर रहा था, 65 नाउ, वकील है. तो मैंने बोला, उसके लड़के भी सब वकील बन गए, मैंने अभी आप छोड़िए इसको, अभी आप भगवद गीता पढ़िए, अभी बुढ़ापा आ गया. बोले अभी तो मैं 60 साल का जवान हूँ अभी मैं क्यों छोड़ू, अभी तो मैं आई एम 60 ईयर्स यंग मैन. सो सी, अगर हम ये भावना रखेंगे कि हम बूढ़ा होने पे भगवद गीता पढ़ेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप कभी नहीं सोचेंगे मैं बूढ़ा हो गया. आप सोचेंगे नहीं अभी तो और टाइम है. लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, कुछ निश्चित है, 60 साल की हमारी उम्र होगी, पता नहीं 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो. तो इसीलिए भगवद गीता के माध्यम से भगवत धाम जाने की तैयारी हमें इसी समय से शुरू कर देनी चाहिए. अपना भाग्य बनाइए, पुरुषार्थ कीजिए. किस तरफ, ये वास्तव में पुरुषार्थ है कि शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करना, ये रियल पुरुषार्थ. इसमें होप है, इसमें आशा है, और जो दूसरा रास्ता है उसमें कोई आशा नहीं, इट्स ए होपलेस केस. ओके, हरे कृष्ण. नाउ एनी क्वेश्चंस, अभी इस विषय में आपके कोई शंकाएं हो या असहमतियां हो जो हमने डिस्कस किया है, तो आप लोग डिस्कस, आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग प्रयास करें. यस, जो ब्रह्मा है क्या वो भगवान नहीं है, ऐसा पूछ रहे हैं. हाँ, इज ही नॉट पार्ट ऑफ गॉड. तो ब्रह्मा की सब लोग पूजा करते हैं तो क्या वो भगवान के अंश नहीं है, या क्या वो भगवान नहीं है. अंश तो हम सभी हैं भगवान के. ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सभी जो जीव हैं वो भगवान के अंश हैं, इसलिए ब्रह्मा भी अंश हैं. लेकिन अंश और भगवान में अंतर है, क्योंकि वो अंश हैं और सनातन अंश के रूप में रहते हैं. तो भगवान के हम अंश हैं, ब्रह्मा जी भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश हैं और हमेशा अंश रहते हैं. तो वो लोग ब्रह्मा जी की महान स्थिति है कि ब्रह्मा जी ऐसे जीव हैं, इस भौतिक जगत में सबसे पायस सबसे पुण्यशाली जीव हैं ब्रह्मा, इसलिए उनको कार्य सौंपा गया है इस भौतिक जगत का संचालन करने का। जैसे एक जेल के अंदर बहुत सारे कैदी हैं, लेकिन कुछ कैदी हैं जो सुधरे हुए हैं, अभी सुधर गए हैं, तो उन कैदियों को काम सौंपा जाता है, ठीक है आप बाकी सब कैदियों को जरा संचालित करो, बाकी सब कैदियों को खाना दो, कंट्रोल करो उनको। तो है सब कैदी, ब्रह्मा जी भी कैदी हैं, हम भी कैदी हैं इस जेल में, इस भौतिक जगत में, वो भी इस भौतिक जगत के अंदर हैं, उनका भी भौतिक शरीर है, उनका भी जन्म होता है, उनका ही मरण होता है, लेकिन वो सुधरे हुए हैं थोड़ा हमसे ज्यादा। तो इसलिए उनको भगवान कार्य देते हैं कि आप बाकी कैदियों के ऊपर कंट्रोल करो। तो ये सब देवी देवता हैं, वो भी सब कैदी हैं, अर्थात वो भी सब जीव हैं, लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार वो इस भौतिक जगत के संचालन करते हैं। तो कैदी हैं, अभी कैदी सुधरे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं, तो इसे सुधरे हैं इसलिए उनको ठीक है, बाकी सब लोगों को पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन अभी वो सुधर रहा है, तो ठीक है आप आके थोड़ा अकाउंट्स मेंटेन करो, लेकिन हैं दोनों जेल के अंदर ही, लेकिन थोड़ा अच्छा काम किए इसलिए अभी पत्थर तोड़ने की जगह अभी आप थोड़ा यहाँ अकाउंटिंग में हेल्प करो। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी अच्छे हैं, इसीलिए उनको बहुत लंबी आयु है, कष्ट कम है, लेकिन अभी भी जन्म मृत्यु है, उनकी भी डेथ होगी, लेकिन बहुत साल के बाद। देयर हमारे जैसे होते हैं फाइव, हाँ काम क्रोध लोभ मोह होता है। आप देखिए इंद्र, आप बहुत बार सुनेंगे कि इंद्र जो है कोई यज्ञ करने जा रहा है और इंद्र परेशान हो गया, अरे भाई ये यज्ञ कर लेगा तो मेरी पोस्ट ले लेगा, तो उसका इंद्र जो है यज्ञ भंग कराने के लिए बहुत बहुत प्रयास करते हैं, तो ईर्ष्या है तभी तो ऐसा करते हैं। तो देवतागण जो है वो भी भौतिक जगत के अंदर है, उनके अंदर भी ये सब दुष्परिणाम रहते हैं, लेकिन कम, भौतिक जगत से कम, लेकिन उनके अंदर भी ये सब वासनाएं रहती हैं। वासनाओं से मुक्त हैं केवल शुद्ध भक्त, और जब वो वासनाओं से हम पूर्णतः शुद्ध होते हैं, अर्थात भगवान के सच्चे शुद्ध भक्त बनते हैं, तभी हम इस भौतिक जगत से बाहर निकलकर भगवत धाम जाने के योग्य बनते हैं, वही योग्यता है। किसकी डेफिनेशन? शुद्ध भक्त मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। अन्य सभी अभिलाषाएं छोड़कर जब शून्य हो जाएं और एकमात्र एक अभिलाषा रह जाए भगवान को संतुष्ट करना, तब उसे हम शुद्ध भक्ति कहते हैं। अभी हमारी सबकी बहुत सारी अभिलाषाएं, क्या अभिलाषाएं हैं? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के अनेक अनेक अभिलाषाएं, जब वो सब अभिलाषाएं परिवर्तित हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, भगवान को की इंद्रियों को संतुष्ट करने की अभिलाषा में, तब उस स्थिति को हम कहते हैं शुद्ध भक्ति की स्थिति, वो योग्यता है भगवत धाम जाने। और कोई प्रश्न? नहीं, हमने बताया फल कई प्रकार के होते हैं, कुछ हैं जो तुरंत ही मिल सकते हैं, कुछ हैं जो बहुत लंबे समय बाद मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस जन्म में आप जो कार्य कर रहे हैं उसके तुरंत भी मिलेंगे, और कुछ उसके जो परिणाम होंगे वो कई समय बाद भी मिलेंगे। तो जो फल हैं वो अलग प्रकार के हैं, तो इमीडिएट भी मिलते हैं और बाद में मिलते हैं, बोथ वैरायटीज। तो इस जीवन में भी, इस शरीर में मिल सकते हैं, नेक्स्ट शरीर में मिल सकते हैं, इस जीवन के बाद के शरीर में मिल सकते हैं, लेकिन ये चैन कंटिन्यूस रहती है, तो अभी मिल सकते हैं, बाद में मिल सकते हैं, सभी अभी कभी नहीं मिलने वाले, इसलिए तो नेक्स्ट बॉडी मिलती है, नहीं तो बॉडी अगर सभी इस जीवन के जितने भी कर्म किए उसका सब फल इसी जीवन मिल गया तो फिर नेक्स्ट बॉडी क्यों मिले? फिर नेक्स्ट बॉडी इसलिए मिली है कि ऐसे फल जिनका अभी आपको भुगतान नहीं हुआ है उनको भोगने के लिए आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगी जिसमें आप उनका भोग करेंगे, क्योंकि ये कर्म के फलों को भोगने के लिए शरीर मिलता है, क्योंकि फलों को भोग करने के लिए शरीर चाहिए, क्योंकि वो आत्मा के लिए नहीं है वो भोग, वो शरीर के लिए है, इसलिए शरीर उसके लिए चाहिए। हाँ हाँ, आप कक्षा के प्रारंभ में आ गए थे या बीच में आए? थोड़ा सा तो हमने बताया, आपने उस व्यक्ति का यानी आत्मा का कितने साल तक का लेखा जोखा देखा है कि उसने अच्छे काम किए हैं? मैक्सिमम है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब दिस लाइफ टाइम। ओके, लेकिन वो जो आदमी है आत्मा, उसका ये लाइफ टाइम तो क्या है? इटर्निटी। इटर्निटी में एक छोटा सा फ्लैश, ये 50 साल हमारा, हम नित्य हैं और अनेक अनेक जन्मों से इस भौतिक जगत में कार्य करते आ रहे हैं, तो उसमें ये लाइफ टाइम तो क्या है? फ्रैक्शन है ना। तो आपने केवल उसका एक छोटा सा भाग देखा है, तो उस भाग को देख के हाँ नहीं, जो भी, हम ये नहीं कह रहे कि उसने गलत काम किया, अच्छा किया, लेकिन वो केवल छोटे से लाइफ टाइम को ही आप देख पाए ना, और उससे पहले कि जो उसने किया उसका क्या होगा? लेकिन उसके पैदा होने से पहले भी तो उसका जीवन है ना, मैक्सिमम उसके माता पिता जब जन्म हुआ तब से आगे तक का जानते हैं ना, पर उसको जब ये शरीर मिला उससे पहले का भी तो उसका जीवन है, उसको तो उन्होंने नहीं देखा ना, नहीं देखा ना, तो उसका तो उनको नहीं पता ना, तो वही तो हम बता रहे हैं कि केवल इस आत्मा जो है वो नित्य अलग अलग शरीर में जा रहा है, तो हम एक छोटे से उसको देख के कैसे कर सकते हैं? एक आदमी कहीं से किसी को मर्डर करके अभी यहाँ रहने लगा अहमदाबाद में, और पड़ोसी है, 10 साल से हम उसको देख रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी है, सुबह उठता है, मंदिर में जाता है, लेकिन उसे पुलिस आती है पकड़ने के लिए, पकड़ लिया, भाई क्यों भाई, हम 10 साल से देख रहे हैं उसको, बहुत अच्छा आदमी है, वो उससे उससे पहले क्या किया उसने, जहां से आया उसका उसका क्या करेंगे आप? तो उससे ऐसे उसी। और कोई प्रश्न है? यस, आत्मा इससे अलग है, जब कर्म नहीं है और फल नहीं है तो आत्मा को, यस, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा प्रारंभ करते हैं, तो जो भी हमारे कर्मों के फल हैं सिंचित, वो सब खत्म हो जाते हैं, और हम नेक्स्ट कर्म क्रिएट करना, कर्म फल बनाना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि हम अकर्म करना प्रारंभ करते हैं, यानी ऐसे कर्म करना प्रारंभ करते हैं जिनका कोई प्रतिफल नहीं बनता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म अर्थात शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्म, लेकिन पुण्य कर्म मतलब उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा, फल मिलेगा मतलब भौतिक शरीर मिलेगा, देवताओं का मिलेगा, लेकिन शरीर मिलेगा, उसे कहते हैं पुण्य कर्म या कर्म। विकर्म, विकर्म मीन्स पाप कर्म, उसका बुरा परिणाम यानी कि लोअर बर्थ्स। लेकिन एक तीसरी प्रकार का कर्म है जिसे कहते हैं अकर्म। अकर्म मतलब जिसका कोई प्रतिफल नहीं बनता, इस अकर्म करने से ही ये कर्म फल की श्रृंखला कटती है, बंद होती है। नहीं तो आप ये प्रश्न उठा सकते हैं, ये श्रृंखला कैसे बंद होगी? हम एक प्रकार का परिणाम भुगत रहे हैं और इस समय जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम आगे भुगतेंगे, तो चलते रहेगा, चलते रहेगा, तो कैसे रुकेगा? जब आप अकर्म करना प्रारंभ करेंगे, अर्थात ऐसा कार्य करना प्रारंभ करेंगे जिसका प्रतिफल नहीं बनता है, और वो क्या कर्म है? भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाए उसका कोई परिणाम आपको भुगतना नहीं पड़ता है। जैसे कोई सैनिक है, वो कमांडर के आदेश पर किसी को मारता है, तो उसका जिम्मेदार क्या वो बनता है? नहीं बनता है, उसकी जिम्मेदारी कमांडर की रहती है जिसने उसको आदेश दिया। वही सैनिक अपने घर में आके सरकार की दी हुई गन से अपने पड़ोसी को मार दे, तो उसका जिम्मेदार वो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अभी उसने आदेश में नहीं, अपनी विम्सिकल, अपनी तरफ से उसको मारा है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के आदेश से काम करना प्रारंभ करते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर्म प्रारंभ करते हैं, तब ना तो वो कर्म होता है, ना तो विकर्म होता है, वो अकर्म होता है। तो भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाए वो अकर्म है, उससे कर्म फल नहीं बनता है। और यही हमारा संदेश है, भगवद्गीता का संदेश, कि पुण्य और पाप को छोड़ करके, पुण्य करेंगे स्वर्ग लोक में जाएंगे, पाप करेंगे नरक लोक में जाएंगे, लेकिन दोनों ही आत्मा के लिए नारकीय है। दोनों को छोड़ करके हमें भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति सेवा प्रारंभ करना चाहिए, जिससे हम भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करें। और ये भक्ति सेवा प्रारंभ होती है अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके, और वो सेवा प्रारंभ होती है जिह्वा से। जिह्वा के दो कार्य हैं, टेस्ट खाना खाना और दूसरा उच्चारण करना। तो हम केवल भगवान को अर्पित भोग यानी कि प्रसाद रूप में ग्रहण करें और भगवान का गुणगान करें, इस प्रकार से हम जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाएं। कान का काम है सुनना, तो भगवान के विषय में सुनना, भगवान के निर्देशों को सुनना, यह है कानों को भगवान की सेवा में लगाना। हाथ का काम है कार्य करना, तो भगवान के मंदिर को साफ करने में, भगवान को श्रृंगार करने में, इन सब कार्यों में हम हाथों को लगाएं। पैर का काम है चलना, तो पैरों को हम भगवान के मंदिर में आने में लगाएं, ये पैरों को भगवान की सेवा में लगाना है। बुद्धि का काम है इंटेलिजेंटली सोचना, थिंक करना, तो हम भगवान के इस आदेश को दूसरों को कैसे दिया जाए, कैसे भगवद्गीता का प्रचार किया जाए, इसमें अपनी बुद्धि को लगाएं, ये बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है। मन का कार्य है चिंतन करना, सोचना, तो हम भगवान का सुंदर विग्रह का चिंतन करें, स्मरण करें, तो वो मन को भगवान की सेवा में लगाना है। इस प्रकार से हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करते हैं और ये कर्म बंधन से निकलते हैं और निश्चित रूप से भगवत धाम जाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। यस, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा, भगवान ब्रह्मा जी भगवान के अंश हैं, तो भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। शास्त्रों के द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, विष्णु, भगवान राम, ये एक ही व्यक्ति, अलग अलग विस्तार हैं उनके, स्व अंश, वो भी स्व अंश हैं, वो उनके स्व अंश विस्तार हैं, हम उनके विभिन्न अंश हैं, सेपरेटेड हैं। तो ब्रह्मा इत्यादि हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम विभिन्न अंश हैं, सेपरेटेड एनर्जी है। लेकिन भगवान के स्व अंश विस्तार यानी सभी विष्णु तत्व, वो सब भगवान एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप में है। तो श्री कृष्ण है भगवान। ओके, यस, तो हर एक चीज की परिभाषा होती है, आपको उसके अनुसार जज करना पड़ेगा। कोई भी आदमी लेबल लगाने से नहीं बन जाता, करेक्ट? डॉक्टर की ड्रेस पहनने से या डॉक्टर का लेबल लगाने से डॉक्टर नहीं बन जाता, उसकी एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए, करेक्ट? तो भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान जब हम बोलते हैं तो उसका आपसे क्या समझते हैं भगवान से? आप भगवान मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? जस्ट इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस वर्ड, भगवान मीन्स वॉट? गॉड मीन्स वॉट? Who has made this world? Okay, then? Who is controlling everything? So creator, controller, Okay. तो अभी आप नाम लिए साई बाबा, तो now you study साई बाबा. Has he made this whole universe? Is he controlling this whole universe? आप जाके study कीजिए, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? क्या ये सूरज उनकी वजह से चल रहा है? अगर वो बोले सूरज बंद हो, सूरज बंद हो जाएगा, है ना? क्या वो अपने को ही, अपने बूढ़े होने को ही रोक पा रहे हैं? क्या वो अपने मरण को रोक पा रहे हैं? रोक पाएंगे? इसका मतलब उनके ऊपर कोई कंट्रोलर है जिसकी वजह से उनको शरीर त्यागना पड़ रहा है? तो इसका मतलब भगवान नहीं है। अगर भेजा भी होगा तो वो पैगंबर होंगे, ओके? तो भगवान तो नहीं है, ओके? यदि वो भगवान के द्वारा भेजे गए तो उनका कार्य क्या होना चाहिए? भगवान की बात बताना। तो फिर आप ये स्टडी कीजिए कि आप वो जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो भगवान की बात है। तो अगर वो कह रहे हैं तो है भगवान के द्वारा भेजा, नहीं तो वो नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं? आप बताइए क्या कह रहे हैं, मेरे को पता नहीं, आप बताइए क्या कह रहे हैं साईं बाबा? और कौन है भगवान? कौन है भगवान? वो किसे बता रहे हैं भगवान? बट हु इज दैट? सेवा करो आप, हवा की सेवा नहीं कर सकते ना। आपको आपको सेवा करनी है तो आपको पता होना चाहिए किसकी सेवा करनी है। आपको बोलो बस एक है कुछ शक्ति है, अभी क्या सेवा करो, कैसे, कौन है वो, कैसे सेवा कैसे करेंगे आप, सोचिए। तो अगर वो भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि कौन है भगवान। मत्ता परतरम नान्यात किंचित अस्ति धनंजय अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं भगवद्गीता में, सभी शास्त्रों में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है। तो यदि वो भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं तो वो क्यों स्पष्ट नहीं बोलते कि श्री कृष्ण भगवान है। हाँ जी, चैंटिंग इज वन इज चैंटिंग हरे कृष्ण हरे राम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग विद दिस हरे कृष्ण हरे राम। तो कृष्ण का नाम लेकर के बहुत लोग बोलते हैं हाँ कृष्ण, पर कृष्ण कौन है? कृष्ण एक महापुरुष है जो आया, जो निराकार में से आया। तो राम कृष्ण नाम लेने से ही काम नहीं चल जाता, वो समझना भी होगा ना कि वो राम कृष्ण किसको कह रहे हैं। तो मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ क्या, मेरे दादाजी का नाम कृष्ण था, मैं उनको लिए बोल रहा हूँ, तो वो नहीं चलेगा। सो दे मस्ट अंडरस्टैंड कि हम किस राम कृष्ण मीन्स वी अंडरस्टैंडिंग दिस, कृष्ण इज अ सुप्रीम पर्सन, नॉट माई दादाजी और वो निराकार, ये नहीं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो यू हैव टू बी केयरफुल। यस, तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस भौतिक जगत के संचालन करने के अधिकारी हैं, तीन देव, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण के अधिकारी हैं विष्णु, रजोगुण के हैं ब्रह्मा और तमोगुण के हैं अधिकारी शिव। वो इस भौतिक जगत के संदर्भ में है। विष्णु हैं वो भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं, स्वांश विस्तार हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश वो क्रिएशन करते हैं, पर किसकी शक्ति से करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के वो विस्तार हैं और उनका वो कार्य है सृजन करना, पर अल्टीमेट सृजन करता वो नहीं है, वो उनके माध्यम से कर रहे हैं। उनकी शक्ति जो ब्रह्मा है वो उपसृजन करते हैं, उपसृजन, सेकेंडरी क्रिएशन। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उनको सृजन करने की शक्ति कहां मिली, आप भागवत में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ सब तरफ अंधेरा, पहले जीव थे, कोई जीव भी नहीं था, नोबडी लिविंग एनिटी, व्हाट आई एम, हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, नहीं। तो फिर उनको भगवान ने प्रेरित किया और बोला तपस्या कीजिए। तपस्या करने पर भक्ति योग से उनको भगवान ने ज्ञान दिया कि वो कौन है, उनका क्या कार्य है, कैसे सृजन करना है, सृजन करने का कार्य करो। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि कैसे सृजन करना है, वो सब ज्ञान उनको भगवान श्री कृष्ण ने दिया, तब उन्होंने सृजन किया। तो इसलिए वो अल्टीमेट क्रिएटर नहीं है। ओके, सो कोई प्रश्न है? और तो यहां, हाँ, हनुमान जी इमोर्टल हैं, चिरंजीव हैं। चिरंजीव मींस वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ, बहुत बहुत लंबा जीवन। लेकिन अमर, जब हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्तों का जो शरीर होता है वो आध्यात्मिक होता है, मतलब उनका शरीर आत्मा अलग अलग नहीं होता है, दिस होल थिंग इज आध्यात्मिक स्पीच। तो वो कोई भी जीव, केवल हनुमान जी नहीं, जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनका जो आध्यात्मिक जगत में है वो सब शाश्वत है, इमोर्टल है। वो इस भौतिक जगत में आते हैं, देन ऑल्सो इफ दे आर विजिटिंग तब भी वो अपने शाश्वत शरीर में आएंगे, तो वो शाश्वत रहेंगे। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में भगवान के आदेश से आते हैं, सो दे एक्सेप्ट मेटेरियल बॉडी ऑल्सो। तो वो रहते हैं हमेशा अपनी शुद्ध चेतना में, इस दृष्टि से वो भौतिक शरीर के प्रभाव में नहीं आते हैं। तो इस दृष्टि से वो हमेशा भगवान की भक्ति रहते हैं और दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट। लेकिन जो भौतिक शरीर धारण किए हैं वो जाएगा, लेकिन भगवान जब आते हैं इस भौतिक जगत में तो वो स्वयं अपने शाश्वत आध्यात्मिक देह में आते हैं। इसलिए उनको कोई भौतिक देह नहीं होता जिसको त्यागना पड़े। दैट इज इट, दैट्स इट। हरे कृष्णा। अभी